الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. ان شاء الله تعالى آج ہم پہلے سورة الانشقاق آیت نمبر 16 سے اس کو مکمل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ سورہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالشفق، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق وہ اس سرخی کو کہتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان آسمان پر ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک قدرت ہے، بہت خوبصورت رنگ ہے، اور یہ بھی انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور واللیل اور رات کی، وما وسق اور وہ جو سمیٹ لے، اکٹھا کر لے. رات کی قسم کھائی ہے، والقمر اذا اتسق اور چاند کی جب وہ اس کے پورا ہو جائے، جب چاند مکمل ہو جاتا ہے، چودھویں رات کا چاند. اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان قسموں میں کیا آپ کو بتدریج نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، سٹارٹ سے اگر آپ دیکھیں تو پہلے قسم کھائی گئی شفق کی، شفق، پھر رات ہو گئی، پھر چاند طلوع ہو گیا اور مکمل چاند ہو گیا. چاند بھی اپنے ایک سے ایک حالت سے مکمل ہو گیا، یعنی پورا کمپلیٹ فل مون ہو گیا. تو ان تین باتوں میں آپ کو کیا مماثلت نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے ایک سے دوسری حالت، دوسری سے تیسری حالت میں جانا، اسی کے اوپر قسم کھائی گئی ہے. لا ترکبن طبقا عن طبق، البتہ تم ضرور سوار ہوگے طبقا، ایک طبق سے دوسرے طبق میں، ایک حالت سے دوسری حالت میں. یعنی تمہاری زندگی کے اندر بھی اسی طرح، جیسے کہ یہ قسم کھا کے بتایا گیا کہ ایک سے دوسری حالت ہے نا. پہلے دیکھیں آپ، شفق ہے، پھر رات ہو گئی، رات میں ہر چیز سمٹ جاتی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، انسان اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو وہ رات اور اس کے بعد چاند نکل آتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، چاند نظر آنے لگتا ہے، اور اس کی بھی منزلیں، اور وہ منزل طے کرتا کرتا پوری فل مون تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح تمہاری بھی زندگی کے طبقے ہیں، تم بھی ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاؤ گے. حسن بصری فرماتے ہیں، یعنی زندگی میں نرمی کے بعد سختی، سختی کے بعد نرمی، امیری کے بعد فقیری، فقیری کے بعد امیری، صحت کے بعد بیماری، بیماری کے بعد تندرستی. یہ اس طرح سے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں. آپ دیکھ لیں، انسان خود بھی تو ایک حالت سے دوسری میں جاتا ہے. پہلے ماں کے پیٹ میں ہے، پھر اس سے نکلتا ہے، پھر ایک بیبی ہوتا ہے، پھر ایک ٹوڈلر ہوتا ہے، پھر ایک ٹین ایجر بنتا ہے، پھر ایک پورا جوان بن جاتا ہے، پھر عمر ڈھلنے لگتی ہے، ادھیڑ عمری آ جاتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر قبر ہے. تو انسان ایک سے دوسری حالت میں جاتا جاتا ہے، اور ایک حالت کبھی بھی نہیں رہتی. آپ دیکھیں، کبھی انسان کی زندگی اپنی اٹھا کر دیکھیں، آپ جب آپ نے یہ کورس شروع کیا اس وقت سے اب تک دیکھیں، کتنی چیزیں بدلی ہوں گی نا، کتنی زندگی میں چینجز آئی ہوں گی. آپ نے کبھی بیٹھ کے سوچا ایک درجے سے دوسرے میں، اور نہیں تو علم کے ہی درجے میں آپ ایک سے دوسرے میں، ایک پارے سے اگلے، اگلے سے اگلے. اب طبق جو ہوتا ہے، پلیٹ کو بھی کہتے ہیں، طبق بھی آپ نے سنا ہوگا، طبقہ سٹوری کو بھی کہتے ہیں، یعنی منزل، ایک منزل سے دوسری، تیسری، چوتھی منزل، ایک کے اوپر ایک ہوتی ہے نا. تو آپ ایک پارے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تک تیسویں پہ پہنچ گئے، اور اب یہاں پہ تکمیل کی طرف آ گئے. تو انسان ساری زندگی اسی طرح ایک سے دوسرے طبقے میں جاتا رہتا ہے. ہر روز شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے، پھر چاند آتا ہے، وہ بھی ایک دن مکمل ہوتا ہے. اسی طرح زندگی کے بھی طبقے ہیں جن میں ہم ایک طبقے سے دوسرے میں چڑھتے جا رہے ہیں. ہم کہتے بھی ہیں نا کئی دفعہ، آپ نے زندگی کی کتنی منزلیں طے کر لی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک سے سال دوسرا، دوسرے سے تیسرا سال. तो ये हम तबके तय करते जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की निशानी, ये साल पे साल गुजरता जा रहा है, महीने पे महीना गुजरता जा रहा है, एक से हम दूसरे तबके में मूव होते जा रहे हैं। तो इंसान की कभी भी एक हालत नहीं रहती, और इसको अगर आप जोड़े इस शुरू की आयत के साथ, या अय्युहल इंसानो इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुला पे, आप मेहनत करते चले जा रहे हो अपने रब की तरफ जाने के रास्ते में, मेहनत करते जा रहे हो, एक दिन आप उसे मिल जाओगे, उससे मुलाकात हो जाएगी। तो ये गुजरता हुआ वक्त, गुजरती भी हालतें, गुजरती भी उम्र, गुजरते हुए हालात, गुजरते हुए मौसम, ये बदल रहे हैं, हर आन बदल रहे हैं, एक हालत में हम कभी नहीं रहते। इसी तरह अगर आज गम है तो कल खुशी है, और खुशी है तो उसके बाद गम है, आज परेशानी है तो कल परेशानी से निकलने के हालात है, और अगर आज अच्छी हालत में है तो कल को कोई पता नहीं, आज जिंदगी है तो कल मौत है, और कल मौत है तो उसके बाद फिर एक जिंदगी है, कभी फकर है फाका है और कभी खुशहाली है, कभी अमन है तो कभी अमनी बेचैनी है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से इसको लिया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बशारत है इसके अंदर कि ऐ नबी हालात ऐसे नहीं रहेंगे, एक दिन आपको फतह और गलबा मिलेगा, जैसे आप देख ले रात है और शफक है, फिर रात है, फिर इस तरह चांद का मुकम्मल होना है, तो दर्जा बदर्जा मंजिलें आती हैं, एक से बाद दूसरी मंजिल आती है, और इंसान उसकी तरफ मुंतकिल होता रहता है। अरे एक हदीस मुझे बड़ी प्यारी लगी, बहुत प्यारी भी लगी और बहुत परेशानी वाली भी लगी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, इब्ने आद ए नहीं ए काटते, इब्ने आदम गफलत में है, वो परवाह नहीं करता कि किस लिए पैदा किया गया। अल्लाह ताला जब किसी को पैदा करना चाहता है तो फरिश्ते से कहता है इसकी रोजी, इसकी मौत, इसकी जिंदगी, इसका बद या नेक होना लिख ले, फिर वो फारिग होके चला जाता है, यानी पेट, माँ के पेट के अंदर। दूसरा फरिश्ता आता है, जब ये दूसरा ये काम अपना करके चला जाता है, तो दूसरा आता है उसकी हिफाजत करता है, यहां तक कि उसे समझ आ जाए, यानी अब वो बच्चा है, छोटा बेबी से लेके उस वक्त तक जब तक बालिग नहीं होता, ये फरिश्ता हिफाजत में लगा हुआ है इसकी, फिर वो फरिश्ता उठ जाता है, फिर दो फरिश्ते उसका नाम आया माल लिखने के लिए आ जाते, और वो कब तक लिखते रहते, मौत तक, मौत के वक्त वो भी चले जाते और मलकुल मौत आ जाते और उसकी रूह कब्ज करते, फिर कब्र में उसकी रूह लौटा दी जाती है, मलकुल मौत चला जाता है, कयामत के दिन नेकी बदी के फरिश्ते आ जाएंगे और उसकी गर्दन से उसका नाम आमाल खोल लेंगे, फिर उसके साथ ही रहेंगे एक सायक और एक शहीद, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा लकद कुंत फी गफलत मिन हाजा, तू इससे गफलत में पड़ा रहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत फरमाई, ला तरकबुन्ना तबकन अन तबक, देखो एक तबके से दूसरे में आप मूव होते चले गए ना, या एक हालत से दूसरी में, फिर फरमाया लोगो तुम्हारे आगे बड़े बड़े अमूर आ रहे हैं जिनकी बर्दाश्त तुम्हारे बस की बात नहीं। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह हू अकबर। ये हदीस इब्ने अबी हातिम में है, इसकी सनद के सनद में एक रावी जयीफ है, लेकिन हमारे समझने के लिए इसमें बहुत यानी बहुत बड़ी नसीहत है, कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि सख्त सख्त कामों में से एक के बाद एक से गुजरते रहोगे, तक कयामत आ जाएगी, मौत आएगी, फिर कयामत आ जाएगी। फमा लहुम ला युमिनून, तो इनको क्या हो गया, ये ईमान नहीं लाते, क्या बात है, इतनी बात समझ के, ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की निशानी, इंसान कितना ही चाहे वो एक हालत में नहीं रह पाता, कौन चाहता है कि जवानी खत्म हो, कौन चाहता है कि कभी खुशियां खत्म हो, कौन चाहता है कि मौत आ जाए, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी देखो उसको एक से दूसरी हालत में बढ़ते चले जाना है, और उसका कोई जोर नहीं है, फिर भी उसको समझ नहीं आती कि कोई ताकत है उसके ऊपर, तो ये क्यों नहीं ईमान लाते, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, जब इनके ऊपर कुरान पढ़ा जाता है तो सजदे में क्यों नहीं गिर पड़ते, कौन सी चीज इनको रोक देती है, इनको ये निशानियां नजर नहीं आती, इनके दिल मानते हैं ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता, फिर क्यों नहीं झुक जाते? और झुकना सिर्फ ये नहीं है कि इंसान फिजिकली झुक जाए, अपनी अकल को क्यों नहीं झुका देते, क्यों नहीं इन तब्दीलियों से समझ आती, जब हर दम हमारे सामने तेजी से वक्त गुजरता जा रहा है, तेजी से हालतें बदलती जा रही, और ये अल्लाह ताला की निशानी हमारे सामने है, हम दिन रात इस चीज को देख रहे हैं फिर भी समझते नहीं, बलिल्लदीना कफरू युकद्दिबून, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो झुटलाते हैं, वो मान के ही नहीं देते, ये सब सुन के भी नहीं मानते, ना इस कुरान को, ना हिसाब किताब को, आखरत के दिन को। वल्लाहु आलमु बीमा यूउन, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो वो समेट रहे हैं, समेट रहे हैं यानी जैसे आप किसी चीज को थैली में बंद करके जमा करते हैं ना, उस तरह ये आया, वो थैली होती है या बर्तन होता है ना, तो जो कुछ ये अपने दिल के अंदर बंद कर रहे हैं ना, जिसको किसी को भी नहीं बताते, अल्लाह ताला उसको जानता है। अल्लाह अकबर, ये इंसान तो समझता है कि किसी को नहीं, क्या पता मेरी नीयत क्या है, मेरा इरादा क्या है, मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला उसको जानता है। फबशिर हूं भी आदा बिन अलीम, ये जो कुफर, ये जो शिर्क, ये जो झुटलाना, ये जब अंदर जमा किया है तो खुशखबरी दे दीजिए इनको दर्दनाक अजाब, क्योंकि खुशखबरी क्यों कहा गया, ये तंज है, वरना खुशखबरी तो अच्छी चीज की होती है, तो मुबारक हो इनको दर्दनाक अजाब की जो कुरान को झुटलाने वाले हैं, जिन्होंने के दिलों में इतना तकबर भरा हुआ कि उस तकबर की वजह से ये नहीं मानते, वरना कुरान की हक्कानियत रोजे रोशन की तरह आया है। ये लोग तो कहते थे लास्ट तस्मौ हादल कुरान, मत सुनो इस कुरान को और शोर मचाओ, तो इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इल्लल्लदीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए इसके ऊपर, मान लिया तमाम ईमानियात को, आमिलु सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए, लहुम अजरुन गैरु ममनून, इनके लिए वो अजर है जो खत्म नहीं होगा, जो कम नहीं होगा, मन से है ना, मन एहसान को भी कहते, काटने को भी कहते, और एहसान को, एहसान भी काट देता है ना रिश्तों को, जब इंसान एहसान जताता, तो वो अजर ऐसा है जो चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला, और ये अजर जन्नत में है। तो दुनिया की तो सारी चीजों नहीं खत्म हो जाना है, ये दुनिया जिंदगी भी खत्म हो जाएगी और जो यहाँ पे मिला हुआ वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो देखो कि वो जो ईमान लाए और साले अमल किए उनका अजर कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इंसान देखे कि उसने अपने सीने में क्या क्या छुपाया हुआ है, क्या क्या चीजें, क्योंकि अल्लाह ताला उस दिन इन चीजों को जाहिर कर देगा। तो सुनते हैं अब इस सूरह की यहां से तिलावत आयत 16 से इंशाल्लाह, फिर अगली सूरह शुरू करते हैं।
وَسِيمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير
بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البروج. सूरत बुरुज मक्की सूरत है और ये सूरत भी पिछली सूरतों से मुशाबे है क्योंकि ये भी आसमान के जिक्र से शुरू हो रही है और इसमें भी मोमिनों के लिए बशारत और कुफार के लिए वाईद है। कुरान मजीद की ताजीम है इसमें, इस सूरत में बयान की गई। और इस सूरत में एक तसल्ली है ईमान वालों के लिए और वो जो ईमान वालों को सताते हैं उनके लिए वाईद है बहुत बड़ी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ये बता दिया ईमान वालों को कि देखो दिन एक जैसे नहीं रहते, अगर आज तुम सताए जा रहे हो तो इसके पीछे अपना दीन ईमान ना खो देना, क्योंकि एक दिन वो आएगा कि अल्लाह ताला इन लोगों से जो मुसलमानों को सताते हैं और जो मुसलमानों के दर पे रहते हैं, जो उनको तकलीफें पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देगा। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इसके अंदर लेसन है, क्योंकि हम ये समझ लें कि इस रास्ते में जो अल्लाह के दीन का रास्ता है इसमें लाजमन मुश्किल आएंगी, लाजमन तकलीफें आएंगी, घबराना नहीं है उनसे और इसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि पहले लोगों के ऊपर भी मुश्किल आई थी और हमसे भी ज्यादा आई थी, लेकिन उन्होंने सबर किया था। तो ये सूरत ईमान को बढ़ा देती है और जब भी आपको लगे कि आपका ईमान नीचे जा रहा है, जब भी आपको ये लगे कि मुश्किलात आ रही हैं अल्लाह के रास्ते में, तो इस सूरत को पढ़ लीजिए। ये नहीं कि ये कोई वजीफा है, मगर इस सूरत से आपको तसल्ली मिलेगी और उन लोगों की एग्जाम्पल आपके सामने आएगी जो आपसे बहुत ज्यादा मुश्किलात गुजार चुके हैं। इस सूरत के मुतालिक आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज में आपने इस सूरत की तिलावत की और सूरत तारिक की जो अगली है, और एक और जगह पे आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर और असर में ये सूरत अलबुरूज और अगली सूरत अत्तारिक पढ़ा करते थे। तो हम भी चूंकि इस चीज को अक्सर लोग हम में से हिफ्ज कर चुके, तो हम कोशिश करें कि हम अपनी कम से कम जोहर और असर में इन दो सूरतों को पकड़ लें कि हमने इनको पढ़ना है। इससे हमें सुन्नत पे अमल करने का अजर भी मिल जाएगा और ये दोहराई भी हो जाएगी, क्योंकि अब हम इंशाल्लाह इन सूरतों को समझ लेंगे तो हमें एक हौसला मिलेगा अल्लाह के रास्ते में चलने पे। तो देखते हैं इस सूरत को, चूंकि इसके सारे अल्फाज बहुत ही आसान है तो लिहाजा मैं साथ साथ ही इनकी तशरीह आपके सामने रखती जाऊं। पहले तो सूरतुल बुरूज, बुरूज से है ये पहली इसके आयत में लफ्ज अलबुरूज है उससे है। तो देखते हैं इसका माना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समा कसम है आसमान की, दात दात जो यानी वाला, अलबुरूज बुरजों बुरजों वाले आसमान की कसम। बुरज क्या चीज होती है? बुरज या आपने अपने उर्दू में भी ये लफ्ज सुना होगा, बुरज है इस जगह के, या बुर्ज खलीफा आपने तो सुना होगा दुबई में है। तो क्या चीज है जो उसमें सिग्निफिकेंट है? एक्चुअली टॉल बिल्डिंग है ना, हाई राइजेस जिसको कहेंगे। तो बुर्ज असल में वो चीज होती है जो बहुत प्रोमिनेंट हो, इसी वजह से टावर्स के लिए या किलों के लिए बुर्ज का लफ्ज आता है। इसी तरह जो औरत अपने पर्दे को उतार दे और अपने यानी अपने आप को नुमाया करे, अपने हुसन को नुमाया करे, तो उसको भी तबर्रुज कहते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को नुमाया किया। तो वो जो बहुत प्रोमिनेंट चीज होती है, वो ऊंची चीज भी प्रोमिनेंट होती है। तो इसी से फिर ये सितारों के लिए आता है, जो बड़े बड़े सितारे हैं आसमान में, और मुजाहिद फरमाते हैं कि बुरूज वो हैं जिनमें हिफाजत करने वाले रहते हैं, यानी फरिश्ते, जो गार्ड फरिश्ते हैं, जो आसमानों को गार्ड करते हैं, जो उनकी चौकियां हैं जहां पे उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि शयातीन आसमान के करीब ना आए, तो वहां पे इन बुर्जों के अंदर ये फरिश्ते अपने मतलब पूरी तरह तैयार रहते हैं, और जो ही कोई शैतान इसके करीब आना चाहता है तो उस वक्त उसको वहां से शहाबे साकिब मारते हैं। तो आसमान जो बुर्जों वाला है, अच्छा इसी बुर्ज से फिर आप देखें कि ये जो हॉरोस्कोप्स वगैरह करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये बुर्ज फला है, बुर्ज जो भी इनके नाम है, इतना मुझे आते नहीं है, जो असद और मीजान और पता नहीं क्या इस तरह से। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस्लाम में अलाउड नहीं है, बल्कि इनके ऊपर जो ईमान रखेगा इल्म नजूम के ऊपर, तो उसके लिए बहुत बड़ी वईद है, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती, जो काहिनों के पास जाए और उनकी बात को माने भी और उसकी तस्दीक करे कि हाँ भाई ये तो इसने कहा था और ये ऐसा ही निकला। तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मैं लेकर आया हूँ वो उसका इनकार करने वाला है, यानी ये हॉरोस्कोप्स को जानना या ये इल्मे नजूम को सीखना या ये काहिनों का यानी जो फॉर्चून टेलर्स होते थे या आज भी यही लोग काहिन हैं, ये इनका मशवला होता है, ये किसी मोमिन को जेब नहीं देता कि वो इन चीजों के ऊपर ईमान रखे, क्योंकि जो भी है वो अल्लाह ताला की कदर से होता है। हम सितारों को ये नहीं कहते सितारे की ये फलां चाल या फलां चीज की वजह से ये हुआ, तो लिहाजा इन चीजों के ऊपर ईमान रखना इंसान को कुफर तक पहुंचा सकता है, इसलिए इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कसम खाई, आप देखें पीछे भी कसम आई आसमान की, मगर यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से कसम खाई गई। पहले तो कयामत की कसम थी और यहाँ पे वस्समा, यहाँ पे आसमान के फटने की नहीं है, उसकी निशानी की नहीं है, जो कयामत की निशानी की पहले आप देख चुके हैं, यहाँ पे है ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम है, वल यौमिल मौऊद, और कसम है, कसम किस दिन की, उस दिन जो मौऊद है, जो वादा किया गया है, जिसके वादा वाव ऐन दाल से वादा भी इसी से मौऊद, जिसका वादा किया गया, तो उस दिन की कसम खाई गई। वो कौन सा दिन है जिसका वादा अल्लाह ताला ने किया कि ये आने वाला जरूर, वो कयामत का दिन है, जिसकी हम बार बार पीछे बात भी पढ़ चुके हैं। और जब कसम खाई जाती है तो वो चीज जिसकी कसम खाई जाती है वो उसको भी गवाह बनाया जाता है, और उसकी अहमियत भी हमारे सामने वाजे होती है कि वो चीज कोई अहम ही चीज है जिसकी अल्लाह ताला ने कसम उठाई है, अल्लाह ताला के नजदीक वो अहम चीज है। तो आसमान की और बुर्जों वाले आसमान की, बहुत बड़े बड़े बुर्ज हैं इसके अंदर, वो बड़े बड़े सितारे हैं जिनको बुरूज कहा गया, उनकी कसम अल्लाह ताला ने खाई है, जिन तक आज तक इंसान पहुंच ही नहीं सका, सिर्फ थोड़ा बहुत उनके बारे में जान सका है। और कसम है वादा किए गए दिन की, और व शाहिदिन व मशहूद, और शाहिद वो होता है जो गवाह भी होता है और देखने वाले को भी कहते हैं, यानी अब देखे जो देखेगा वही गवाह भी होगा ना, वरना तो गवाही दी ही नहीं जा सकती अगर कोई चीज देखी ना हो। तो शाहिद की भी कसम, गवाह की भी कसम, और जिस चीज के ऊपर मशहूद वो चीज है जिसके ऊपर वो गवाही देगा, ठीक है। तो मसलन है कि जैसे अल्लाह ताला शाहिद है, गवाह है, और मशहूद क्या है, हर चीज उसकी सारी कायनात मशहूद है क्योंकि उसकी नजर हर चीज पे, तो सबसे बड़ा गवाह और सबसे बड़ा देखने वाला तो अल्लाह ताला खुद है, और मशहूद है सारी चीजें जिनको देखा जा रहा है, जिनको वो जो जो उसकी नजर में है। और ये भी कि इसके बारे में, शाहिद और मशहूद के बारे में बहुत सारे अकवाल हमें मिलते हैं, इतने सारे अकवाल हैं जो पूरे हम यानी मेंशन भी करना मुश्किल है, क्योंकि कोई 25-30 अकवाल इसके बारे में है, और क्योंकि बहुत सारी चीजें शाहिद है ना और मशहूद, उसके मुताबिक हर चीज जो जो देखने वाला होगा वो किसी चीज को ही देख रहा होगा ना, तो देखने वाला शाहिद कहलाए और जिस चीज को वो देख रहा है वो मशहूद कहलाए। ठीक है, तो इसके मुताबिक फिर एक तो ये कौल है कि जुमे का दिन शाहिद है, क्यों? इसलिए कि वो देखता है, वो उस दिन कयामत के दिन गवाही देगा कि इस दिन हम खास खास कुछ इबादत करते हैं, बाकी दिनों में नहीं वो करते, तो ये दिन भी गवाही देगा कि इस बंदे ने इस दिन में क्या क्या किया। सुबहान अल्लाह, क्या आप जुमे के दिन को स्पेशल करते हैं? कोई ऐसी स्पेशल चीज आप करते हैं कि जुमे के दिन जो खास है, मसलन दुरूद शरीफ पढ़ना, मसलन जुमे की नमाज पढ़ना, मसलन दुआएं करना, और इस दिन को स्पेशल इबादत के लिए मुख्तस करना कि इस दिन खास खास ये इबादत की जा रही है जो बाकी दिनों में उस तरह से नहीं होती, तो ये शहादत देगा। ये हमारे लिए बहुत अहम दिन है, खजाने की तरह है हमारे लिए, क्योंकि ये खजाना समझ ले हमें मिल गया कि हमें जुमे का दिन मिल गया, और इसीलिए हम इस दिन अपनी ज्यादा इबादत की तरफ फोकस करें, ज्यादा जिक्र अजकार करें, ज्यादा अल्लाह ताला की बात करें इस दिन के अंदर, क्योंकि ये ही दिन हमारी गवाही का दिन है, ये गवाह है दिन। और मशहूद कहा गया रिवायात में कि आरफा का दिन है, क्योंकि उसको देखने के लिए लोग जाते हैं, यानी उसको उसके लिए जमा होते हैं उस दिन। और इसी तरह कयामत के दिन के बारे में कहा गया वो शाहिद है, और मशहूद क्या है? जो भी उस दिन चल रहा होगा उसको ये दिन देखेगा ना, तो वो मशहूद है। इसी तरह सारी कायनात को कहा गया ये शाहिद है, ये शाहिद है इस चीज के ऊपर, जो मशहूद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, क्योंकि सारी कायनात इस चीज को देख रही है। और इसी तरह फिर जो अरब में लोग थे, सफर करते थे, वो तबाहशुदा शुदा बस्तियां देखते थे, तो वो शाहिद थे, और ये तबाहशुदा बस्तियां जो थी वो मशहूद थी। इसी तरह आप देखें फरिश्ते शाहिद हैं किस चीज पे? हमारे आमाल पे, क्योंकि वो देख रहे हैं हमारे आमाल और लिख रहे हैं, तो हमारे आमाल मशहूद हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद, और जिब्राइल अलैहि सलाम मशहूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा था ना, पूरे उफक पे उनके पार थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए थे उनको उनकी असली हालत में देख के। इसी तरह वक्त शाहिद है, वक्त भी शाहिद है, कुछ तो देख रहा है ना। वाले आसर, असर के वक्त की कसम, तो जब कसम खाई जाती तो वो चीज भी गवाह होती। तो वक्त भी शाहिद है किस चीज पे? जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं उस पे, जो भी हो रहा है यहाँ पे उसके ऊपर ना हुआ बार, यानी इंसान मशहूद है। फिर इसी तरह हमारे जो ये जवारे हैं, हमारे आजा हैं, ये शाहिद है, हमारी स्किन शाहिद है, हमारी हाथ पैर ये आंखें ये कान ये शाहिद है, क्यों? इस दिन ये गवाही देंगे ना किस चीज के ऊपर? हमारे आमाल के ऊपर, कि मेरे से ये करता था, आंखें कहेंगी मुझसे ये देखता था, कान कहेंगे मुझसे ये सुना, हाथ कहेंगे मुझसे ये काम लिए इसने, पैर कहेंगे यहां यहां चल के गया। अल्लाहु अकबर। और आपको पता है ना सूरह निसा की आयत सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े थे, जिसमें ये था कि ए नबी, हम आपको उस दिन गवाह बनाएंगे आपकी उम्मत के ऊपर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद होंगे और आपकी उम्मत मशहूद होगी, और इसी तरह आप दूसरी उम्मतों पे भी शाहिद होंगे, जो दूसरी उम्मतों तक उनके पैगंबरों ने पैगाम पहुंचा दिया था, और इसी तरह ये उम्मत मुस्लिमा शाहिद होगी और मशहूद होंगी दूसरी उम्मतें, और इसी तरह ये जमीन शाहिद है और मशहूद जो कुछ इसके ऊपर हो रहा है, जमीन गवाही देगी ना हमारे आमाल की, आसमान शाहिद है जो कुछ इसके नीचे हो रहा है वो मशहूद। अल्लाह अकबर। तो आप देखें कि हर चीज को आप देख लें, कोई ना कोई चीज किसी चीज के ऊपर गवाह है, ये हमारे दरो दीवार शाहिद है और हमारे आमाल मशहूद है, इनको ये देख रहे हैं, ये ना सोचे कि इनको कुछ पता नहीं चलता। अल्लाह अकबर। तो बहुत सारी इससे चीजें मुराद ली गई, और सभी मुराद हो सकती। कुतिला अस्हाबुल उखदूद। अब यहां पर किस चीज के ऊपर कसम खाई जा रही है? बाज कहते हैं कि कसम यहाँ पे महजूफ है, यानी आप खुद ही समझ लो कयामत का दिन आने वाला है, जिसकी बार बार पीछे बात की गई, और बाज कहते हैं कि आगे जो बात है इन लदीना फतल मुमिनीना वल मुमिनात आयत 10, उसके ऊपर कसम खाई गई। तो قتل اصحاب الاخدود, या कि इस बात के ऊपर कसम खाई गई कि मारे गए. कुतीला यहाँ पे लुईना के माने में है कि लानत है इनके ऊपर. कुतीला पहले भी आया था ये लफ्ज, एक बद्दुआया कलिमा है. मारे गए, हलाक हो गए, तबाह हो गए अस्हाबुल उखदूद, खंदकों वाले, जिन्होंने खंदकें खोदी थी. ये नहीं कि जिन्होंने जो खंदकों में पड़े, बल्कि जिन्होंने खंदकें खोदी वो लोग तबाह हो गए, वो मारे गए. अब इसके पीछे जो एक वाकया हमें मुस्लिम में और मुस्नद अहमद में मिलता है, बहुत मुख्तसर आपके सामने रखती हूँ कि एक बादशाह था, उसका एक जादूगर था. जब वो बूढ़ा हो गया तो जादूगर ने कहा, मुझे एक ऐसा बच्चा दे दो जो कि जरा आप जहीन हो, ताकि मैं उसको तालीम दूँ और वो फिर आगे मेरी ये लेगेसी लेके चले. तो एक बच्चा देखा गया जो कि बहुत जहीन था, उसको जादूगर ने जादू सिखाना शुरू कर दिया. लेकिन जो बच्चा जिस रास्ते से जादूगर के घर जाता था, उस रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता था. वो राहिब वगैरह उस वक्त वो क्रिश्चियन होते थे, तो वो राहिब वाज करता था, लोगों को नसीहत करता था. ये बच्चा खड़ा सुनता रहता था, हत्ता कि उसने राहिब से बहुत कुछ सीख लिया. और इतना कुछ सीख लिया कि फिर एक दफा वो बच्चा जा रहा था और उसने यानी एक जानवर को पत्थर से हलाक कर दिया, और लोगों को उससे निजात मिल गई जो खूंखार जानवर था. इस तरह बच्चे की ये बात और लोगों में मशहूर होने शुरू हो गई. और बादशाह का एक नाबीना वजीर था, उसको भी इस बच्चे ने अल्लाह ताला का नाम लेके उसको उसके हाथ में यानी अल्लाह ताला ने शिफा रख दी थी, तो उसकी बीनाई वापस आ गई. ये बात अब बादशाह तक जब पहुंच गई तो बादशाह उसके खिलाफ हो गया, क्योंकि वो उस जमाने में ये होता था कि बादशाह अपने आप को खुद खुदा कहते थे. तो उसने कहा कि मैं हूं तेरा रब. तो बच्चे ने कहा कि नहीं, तू मेरा रब नहीं है. बादशाह ने कहा कि तू इसको जाके पहाड़ से गिरा दो. तो पहाड़ से गिराने के लिए उसके सिपाही लेकर गए, लेकिन वो खुद ही गिर गए वहां से, क्योंकि बच्चे ने एक दुआ की, अल्लाहुम्म अक्फिनीहिम बिमा शिता. ये दुआ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दुआ है कि ऐ अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे निजात दे. और ये दुआ हमें पढ़नी चाहिए किसी भी दुश्मन के मुकाबले में, ठीक है. और फिर इसी तरह उन्होंने बहुत हीले किए, बहुत तरीके किए, लेकिन किसी तरह भी वो बच्चे को हलाक ना कर सके. डुबोना भी चाहा पानी में, लेकिन खुद डूब गए. लेकिन हत्ता के बादशाह तंग आ गया, तो बच्चे ने कहा, मुझे एक तरीका पता है, तुम उस तरीके से मुझे मारोगे तो फिर मैं मर जाऊंगा. और वो ये है कि तुम कहना मुझे मारने से पहले, बिस्मिल्लाह रब्बी हादल गुलाम, कि अल्लाह के नाम पे जो रब है इस गुलाम का, इस बच्चे का, तो फिर देखना कि मैं मर जाऊंगा. तो बादशाह ने लोगों को जमा किया और तीर चलाने से पहले यही कहा, और फिर जब बच्चे को मारा गया तो वो शहीद हो गया. जब लोगों ने ये देखा तो उनको यकीन हो गया कि ये बच्चा सच्चा था, और वो सब तरफ से आवाजें आने लगी कि हम इस बच्चे के रब पर ईमान ला चुके. ये हाल देखकर वो बादशाह तो घबरा गया, और उसने कहा, ये क्या हो गया, ये तो उल्टा ही हो गया. बजाय इसके कि एक बच्चा था जो मेरे पर ईमान लाने से बाज आया था, और कहां ये कि इतना मजमा ईमान ले आया. तो उसने कहा कि अब इसका यही हाल है कि खंदकें खोदी जाएं और उसके अंदर लकड़ियां भर दो, जिनमें आग लगा दो, और जो मेरे दीन से इनकार करेगा, मेरा इनकार करेगा, उसको आग में डाल दो. उस वक्त के वो जो लोग थे, उनके सबर और जब्त एक कितनी बड़ी मिसाल था कि उन्होंने आग में जलना कबूल कर लिया, कूद कूद के आग में गिरने लगे, लेकिन उन्होंने दीने इस्लाम नहीं छोड़ा. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से भी बहुत पहले की बात है ये वाकया. और इस्लाम आपको पता है ना, वो दीन आदम अलैहि सलाम से लेकर कयामत तक जो भी तौहीद का दीन है वो इस्लाम ही है. तो उस वक्त एक औरत थी जिसकी गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था, वो जरा हिचकिचाई, क्योंकि वो बच्चों को भी डाल रहे थे, औरतों को, बूढ़ों को, किसी को नहीं उन्होंने छोड़ा था. तो उस वक्त वो थोड़ा हिचकिचाई कि उसके गोद में दूध पीता बच्चा था. तो बच्चे को अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत दे दी. तीन बच्चे जो बोले उनके अंदर ये एक बच्चा है, एक जुरैज के लिए जो बोला था, और एक ईसा अलैहि सलाम बोले, और एक ये बच्चा बोला. उसने कहा, अम्मा क्या कर रही हो तुम, तो हक पे हो, सबर करो और इसमें कूद पड़ो. तो वो माँ भी कूद गई बच्चे समेत. तो ये नौजवान जो था, ये जो शहीद हुए, तो हजरत उमर के जमाने में इन्हीं की एक एक जगह कब्र खोदी गई, तो इनकी कब्र से इनको निकाला गया था, और इनकी उंगली इनकी कनपट्टी पे ही रखी हुई थी. जिस तरह बवक्ते शहादत रखी थी उसी तरह, सुभान अल्लाह। और वैसे के वैसे थे ये, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस तरह अपने प्यारों की मदद फरमाता है और इस तरह से उनको प्रिजर्व कर देता है। तो कुतिला अस्हाबुल उखदूद, मारे गए खंदकों वाले, ये गड़े वाले जिन्होंने ऐसा किया, अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐलान कर दिया। और इस तरह से ईमान वालों को एक तसल्ली दे दी कि याद रखो, जिन लोगों ने भी ईमान वालों को सताया वो कहीं भाग के नहीं जा सकते। वो जिन्होंने अन्नारी दातिल वकूद, जिन्होंने आग जलाई थी, आग थी जात, मैंने आपको बताया वाली या वाला, अल वकूद ईंधन, ईंधन वाली जो आग जलाई थी कि उसमें अखदूद। अच्छा ये याद रखे, अखदूद जो है ना ये जमा नहीं है, ये वाहिद है। और जो नार जो ईंधन वाली, इज हुम अलैहा कुऊद, जब वो उस पर बैठे हुए थे, ये सारा उनका वाक्या बताया जा रहा है जी, किस तरह से वो सीन हो रहा था वहां पर कि वो उस आग के ऊपर बैठे हुए थे। अब यहाँ पे बाज ने ये माना लिया कि आग के ऊपर, अलैहा का माना ये है कि वो आग पे बैठे हुए थे, यानी वो आग के ऊपर ही थे, यानी वो भी आग में गिर गए। इतनी बड़ी आग थी कि वो बैठे थे, करीब थे तो इसलिए। लेकिन बाद ने कहा नहीं, आला का माना यह कि वो उसके करीब ही थे तो इसलिए आला कहा गया। अच्छा आप देखिए ना, वैसे तो ऐसे होता है कि ठीक है, एक हुक्म दे दिया गया और वो सिपाही कर रहे हैं या कुछ है, लेकिन ये लोग खुद बैठे हुए थे, किस लिए बैठे हुए थे? आग पे, वहुम आला मा यफालूना बिल मुमिनीना शुहूद, और वो खुद उसके ऊपर थे, और वहुम आला और वो ऊपर, मा यफालूना जो वो कर रहे थे, बिल मुमिनीना मोमिनों के साथ शुहूद हाजिर थे। अब यहां से भी हमें शाहिद व मशहूद की बात पता चल गई, ये उस दिन शाहिद थे और मशहूद क्या था, वो मोमिन जो जल रहे थे आग में, ये बैठ के उनका तमाशा देख रहे थे। यहां पर आप देखें यफालूना आया, यामलूना नहीं आया, यामलूना अमल से है और यफालूना फेल से है। तो अमल और फेल में थोड़ा सा फर्क है। फेल जो है वो बगैर सोचे समझे इंसान जो करते, जैसे कि किसी के नाक पे मक्खी बैठी तो वो बगैर सोचे समझे ऐसे हाथ से उड़ाना शुरू कर देना, उसके लिए वो कोई नियत नहीं करता। लेकिन जो फेल है, जो अमल है, उसके अंदर नियत होती है। तो वहुम अलामा यफालूना बिल मुमिनीना शुहूद, तो वो उस पर जो वो कर रहे थे मोमिनों के साथ, वो हाजिर थे उसके ऊपर, वो उसके ऊपर गवाह थे, वो उसके ऊपर बैठे हुए थे और ये सारा नजारा देख रहे थे। अल्लाह अकबर, हत्ता कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी गिरते हुए देखा। अब हम आज सोचते हैं ना, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे हालात आते हैं जिनको हम सोचते हैं ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो फिर तो उनके साथ तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। और बाज लोग तो अपने ईमान में ही शक करने लगते हैं और अपने ईमान को ही अल्लाह ताला माफ करे उससे ही फिर जाते हैं कि ये हो क्यों रहा है जुल्म जो दुनिया में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तो दीन ही सही नहीं है। तो आपको कुरान ही बताता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ईमान लेकर आए तो आपकी कोई इम्तिहान ही नहीं होगा, और आपके साथ ये पहली दफा हो रहा है या कभी ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये क्या हो गया, इतनी अचंभे की ये बात नहीं है, क्योंकि इस तरह तो होता रहा है। इसका क्या मकाम है, ये कैसे पता चलेगा, ये तो इम्तिहान से ही पता चलता है कि कौन क्या है। इम्तिहान ना हो तो पता क्या चलेगा खोटे का और खरे का। और अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया हमें, आप देखें आ, 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 पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अल्लाह ताला ने तुम्हें आजमाया ही नहीं, उससे जो तुमसे पहले लोगों के ऊपर गुजरा उनके ऊपर तो इससे भी ज्यादा मसाइब गुजरे। हत्ता के एक दफा हजरत खब्बाब जिनको कोयलों पर लिटाया जाता था, और कोयले कैसे बुझते थे, उनकी जो कमर की चर्बी पिघलती थी उससे कोयले बुझते थे, और वो इस जुल्म व सितम को सहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबे के साथ टेक लगाए हुए थे, तो आके फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे, सीधे होके बैठ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अभी से तंग पड़ गए, तुमसे पहले लोगों के ऊपर तो इससे भी ज्यादा मुसीबतें गुजरी। वो जब ईमान लाते थे तो उनके साथ ये कुछ सलूक होता था कि उनके जिस्मों में लोहे की कंघियां चला दी जाती थी, उनमें से एक को जमीन में गाड़ दिया जाता था, उसके सर के बीच में आरा रख के चीर दिया जाता था। उनके साथ क्या कुछ नहीं होता था, लेकिन वो फिर भी साबित कदम रहे। तो अल्लाह ताला आजमाता है। अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में फरमाया ना, अहसिबन नासु अन युतरकु अन यकुलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। तो क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि वो ऐसे ही छोड़ दे दिए जाएंगे कि जब वो कह देंगे हम ईमान लेकर आए और उनका इम्तिहान नहीं होगा? बिल्कुल, यानी इम्तिहान होगा, जरूर इम्तिहान होगा। लोग क्या समझते हैं कि इनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? आज भी इम्तिहान हो रहा है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है इस इम्तिहान को। किसी को दिखा के उसका इम्तिहान लिया जा रहा है, किसी को इम्तिहान में डाल के इम्तिहान हो रहा है, किसी को दे के अल्लाह ताला आजमा रहा है, किसी से ले के अल्लाह ताला आजमा रहा है, लेकिन इम्तिहान सबके हो रहे हैं और मुख्तलिफ हालतों में ईमान हो रहे हैं। और जिसका इम्तिहान हो रहा है, जिसका ईमान जितना ज्यादा हो उसका इम्तिहान उतना ही ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि अंबिया के ऊपर सबसे बड़े इम्तिहान आए। तो कभी ये ना सोचें कि इस चीज के ऊपर शक करने लगे कि पता नहीं ये दीन सच्चा भी है कि नहीं। अगर सच्चा होता तो फिर हमारे पर ये क्यों होता और दुनिया में ऐसे क्यों हो रहा है? क्या पहलों के साथ नहीं हुआ? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मसाइब नहीं आए? अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें देखेगा, अल्लाह ताला तुम्हें जांचेगा। ऐसे ही तो नहीं जन्नत के काबिल बन जाओगे ना। जन्नत बड़ी अजीम जगह है, बड़ी बुलंद जगह है। अगर तुम जन्नत के बासी बनना चाहते हो तो इम्तिहानों की भट्टी से गुजरना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कौन खरा और कौन खोटा। पता तो चले ना कि कौन मुंह से ऐसे ही बोल रहा है मैं ईमान लेकर आया अल्लाह पर, आखरत पर, इस पर, इस पर, और कौन है जो वाकई जिसके दिल में ईमान। क्योंकि जो मुंह से बोलने वाला है वो तो जरा सी आजमाइश के ऊपर भाग निकलेगा, और जिसके दिल में ईमान है वो जानता है कि ये जिंदगी आरजी है, आज नहीं तो कल यहां से चले जाना है, और असल हमारा ठिकाना तो जन्नत है। हम तो जन्नत के चाहने वाले हैं, हम तो उसके तालिब हैं। ये तो छोटे छोटे इम्तिहान है इस दुनिया के, उन्होंने जाने भी दे दी लेकिन दीन को ना छोड़ा। आज अपने आप को इस तनाजुर में रख के देखें, हम कौन कौन सी बातों के ऊपर दीन पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम किस किस वक्त में खड़े हो जाते हैं दीन को छोड़ने के लिए कि अब किसी ने मजाक उड़ा दिया, तो छोड़ो इस चीज को, इसकी वजह से मजाक उड़ाया, हिजाब की वजह से, हिजाब को छोड़ो। किसी ने ताना दे दिया इस्लाम का, तो इस्लाम को छोड़ दो। किसी ने थोड़ी सी बात कर दी, तुम्हारे तो दीन के अंदर देखो लौंडियों के साथ ऐसा करने के ऊपर जायज करार दिया गया, तो दीन को ही छोड़ दो। हमें तो अभी से वो शकु को शुभात होने लगे, ये कैसा दीन है, ये कौन सा ईमान है जो छोटी छोटी बातों के ऊपर ही चला जाता है, ये कौन कैसा ईमान है कि जो जरा से किसी ने कोई शक वाली बात कह दी तो ईमान डगमगाने लगा, शकु को शुभात आने लगे। कैसा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात कह देता है तो हम भी सोच में पड़ जाएं कि हाँ वाकई ये तो ऐसी है बात, किस किस्म का ईमान है? इसलिए कि ईमान अंदर है ही नहीं, ऊपर ऊपर है सिर्फ जुबान की हद तक, दिल में रासिख नहीं हुआ, गड़ा नहीं हुआ। देखें जो चीजें गड़ी होती है ना, ये दरख्त जो कितने तनावर होते हैं उनकी जड़ें कितनी मजबूत होती, आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ऊपर ऊपर ही होते हैं, वो उड़ के कहीं पहुंच जाते हैं। इसी तरह पहाड़ देखें, गड़े में जमीन के अंदर तक उनकी जड़ें, क्या मजाल है आंधियों तूफानों की, कभी ये पहाड़ हिल जाए। तो जब ईमान अंदर है ही नहीं, या इतना कमजोर है कि बस ऊपर ऊपर है, शैलो है बिल्कुल, तो वो उस पौधे की तरह जिसके पास जड़ें नहीं है, बस ऊपर ऊपर नजर आता है। ये नजर आने वाला ईमान ये इस काबिल नहीं है कि जन्नत तक पहुंचा सके या कयामत में निजात दिला सके। इसको मजबूत होना है, इसकी जड़ें अंदर तक जानी चाहिए। क्या बात है कि वो लोग अपनी जानें भी देने के लिए तैयार हो गए, अपने औलादों के साथ बूढ़े बच्चे आग में उनको डाल दिया गया, मगर वो ईमान से नहीं हटे, वो भी बाज आ सकते थे। और ये उस वक्त उतरी आयात जिस वक्त मक्का में प्रोसिक्यूशन जोरों पे थी और मुसलमानों को अजियतों पे अजियतें दी जा रही थी, इतना टॉर्चर था कि इंसान सुनता भी है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बात है कि वो उसको बर्दाश्त कर लेते थे और ईमान को नहीं गिव अप करते थे, और क्या बात है कि हम हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पहले खड़े होते। वो चीज अभी हम तक पहुंची नहीं होती, हम एक वाकया ही सुनते, सुना है फलां जगह पे ऐसे हो गया एक मुसलमान के साथ, सुना है कि मुसलमानों को एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सुना है कि ऐसे। अब फौरन अपने नाम ऐसे रख लिए जो बिल्कुल ऐसे हो कि पता ही ना चले कि मुसलमान है कि नहीं, क्योंकि हम वो नाम भी नहीं रखना चाहते जो हमारी शनाख्त बता दे कि हम मुसलमान। क्योंकि कई नाम ऐसे हैं कि किसी कोई भी देखेगा मोहम्मद नाम ऐसा है, किसी गैर मुस्लिम का हो ही नहीं सकता। लोग घबराने लगे, हाँ ये नाम रख लिया ना तो पता चल जाए, अहमद नाम ना रखो, मोहम्मद नाम ना रखो, अब्दुल्ला नाम ना रखो, ऐसे नाम ना रखो जिससे हमारी पहचान हो जाए, ऐसे नाम रख लो जो इनके भी हैं और हमारे भी, कि पता ही ना चले, अपना हाल हुलिया भी ऐसा बना लो कि पता ही ना चले, कोई बात भी ऐसी ना करो कि पता चले कि मुसलमान है, जुबान से भी कोई ऐसा कलमा ना निकले, बस इतने ब्लेंडिन हो जाओ कि कोई पता ही ना चले कि कौन क्या है। खुद सोचे हम कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम किधर किधर गिव अप कर रहे हैं, हमारे अंदर कितनी कुव्वत है सहने की। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपनी जाने दे दें, यहां तक इस्लाम ने इजाजत दी है कि अगर जान देने का वक्त आए तो तुम्हारे लिए इजाजत है कि तुम उस वक्त अपनी जुबान से उनके लिए कोई कलमा कुफर कह सकते हो और उसे जान बचा सकते हो तो बचा लो। लेकिन हम तो बहुत छोटी छोटी बातों पे ही गिव अप कर देते। हजरत अम्मार को जब तशद्दुद किया गया तो उन्होंने कह दिया था, लेकिन आपसे सलम ने फरमाया अपने दिल में तो तुम देखो, अगर दिल में है ईमान तो ठीक है, लेकिन वो जान जाने का खतरा तक हो गया था। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बातों पे, जॉब नहीं मिल रही वो इसीलिए नहीं मिल रही होगी क्योंकि वो मुझे मुसलमान, खुद ही अपने जहन में सोच लेते हैं वो इसी वजह से नहीं मिल रही होगी क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, लिहाजा जॉब की खातिर तो हम ये कर लेते हैं, हम अपने आप को मुसलमान ही जाहिर ना करें या किसी ही हमारी चीज से पता ना चले कि हम मुसलमान। तो हम तो ऐसे इस्लाम को अपने से दूर हटाते हैं जैसे किसी ने कपड़े पहने हो ना तो कपड़े चेंज कर लेता वो बाहर जाने से पहले, इसी तरह हम घर के अंदर मुसलमान और घर से बाहर हम वो कपड़े उतार के घर में ही चले जाते हैं, कुछ और चेंज करके पहन के कुछ और चलेगा जिससे हमारी शनाख्त ना हो पाए, क्योंकि तो हम अपनी शनाख्त भी एज अ मुस्लिम करवाने से डरते हैं। वो क्या जज्बे होंगे आप किसी वक्त इमेजिन तो करके देखें कि आग लगी हुई है और अभी तक कहा जाता है कि उस जगह पर अभी तक ट्रेसेस हैं जहां पे ये आग की खंदकें खोदी गई थी, ऐसी गहरी खंदकें जिनमें आग लगी हुई है और आग में डाला जा रहा है। अब वो पता है दीने इस्लाम के अंदर आग में डाला जाना, किसी को भी ये सजा देना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया कि किसी को भी आग से जला के सजा ना दी जाए, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है, किसी को ये जायज नहीं है कि वो किसी को आग की सजा दे। इसी से हमें पता चलता है कि वो जो भी ऐसे यानी असलहे हैं, ऐसे बम हैं जो आग वाले हैं, जो आग लगा देते हैं और जिससे लोग जल जाएं, ये भी हराम है। और हमने देखा है कि ऐसी ऐसी मनाजिर हमने देखे हैं कि आग में लोग जल रहे हैं, आग लग गई है और बाहर लोग चीख रहे हैं और अंदर लोग जल रहे हैं और कोई निकाल भी नहीं पा रहा उनको, आपने भी देखे होंगे। वो ऐसा असलहा भी गलत है। तो आग का अजाब सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है, कोई किसी को नहीं दे। उस मंजर को इमेजिन कीजिए और फिर सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे ये इसी आसमान ने देखा हुआ है और इसी जमीन पे हुआ हुआ है। हम भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलता, फरमाया वमा नकमू मिनहुम, और उनको नाराज नहीं थे वो। नकमू का मतलब होता है, नकमा कहते हैं किसी चीज की कराहत, किसी चीज के ऊपर गुस्सा करना, किसी चीज से बिगड़ना, किसी चीज से नाराज होना, किसी को सजा देना या किसी से चीज से नफरत करना। तो उनकी नफरत और किसी बात से नहीं थी, इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद, सिवाय इसके कि ये लोग अल्लाह पर जो अजीज है और हमीद है उसके ऊपर ईमान रखने वाले थे। यानी इनको और कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनको और कोई मसला नहीं था, सिर्फ मसला क्या था कि ये अल्लाह पर ईमान क्यों लेकर आए जो अजीज और हमीद है। यानी उन कोई कोई उनको दुनियावी कोई मसला नहीं था, कोई उनको कुछ और इनसे चाहिए नहीं था, सिर्फ इनका ईमान चाहिए था। याद रखिए ये सूरत इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आगे आगे वो जो फितने आ रहे हैं ना, जो फितने हमारे घरों पे बारिश के कतरों की तरह गिर रहे हैं, उनमें ईमान ही तो जाता है। ईमान के लुटेरे हैं आज, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, और फितना दिज्जाल भी सबसे बड़ा ईमान का ही तो फितना है, ईमान की आजमाइश है। और आज आप ये ना सोचें कि अगर कोई मुसीबत आएगी आके घड़े होंगे तो वही आजमाइश है, नहीं, छोटी छोटी चीजें भी आजमाइश बन जाती। किसी ने आपको रोक लिया इस वजह से कि आप मुसलमान हैं, किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने को ताना सुना दिया, किसी ने को बुरा भला कह दिया, ये भी तो आजमाइशें हैं। इसी तरह आपको, अगर आप गैर मुस्लिम है तो आपको बड़ी जॉब मिल रही है, आपको तरक्की मिल रही है, आप गैर मुस्लिम है तो आपकी वाह वाह हो रही है, लेकिन अगर आप मुसलमान है तो आप पीछे, आपको धकेला जा रहा है, ये भी तो आजमाइशें ही हैं। ये छोटी छोटी हैं हमारे जैसे लोगों के लिए, छोटी छोटी बहुत। कोई उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं आपको जिस तरह से दूसरों को मिल रही है, ये छोटी छोटी आजमाइशें हैं। अगर हम इनके ऊपर ही गिव अप कर देते हैं, बड़ी आजमाइशें तो कोई आई नहीं हम पर, किसी ने किसी को टॉर्चर नहीं किया, बस कोई मैली आंख से ही देख ले तो हम उसी वक्त परेशान हो जाते। उस वक्त हम क्या करेंगे जब फितना दज्जाल आ जाएगा, जिस वक्त वो कहेगा कि किसी को खाने को नहीं मिलेगा, जब तक मेरे ऊपर ईमान ना लेकर आओ, तुम्हारी फसलें खत्म, तुम्हारी जॉब्स खत्म, तुम्हारे सब खाने पीने खत्म, जब खाने के लाले पड़ जाए तो तब कौन स्टेडफास्ट रहेगा, कौन जम के रहेगा। हम तो आज लोगों की बातों के ऊपर ही अपने दीन को छोड़ देते हैं, चलो गैर मुस्लिमों को छोड़े, अपने मुसलमान ही बातें बना रहे, हमारे खानदान बातें बना रहे होंगे, हमारे दोस्त अहबाब कोई बातें बना रहे, हमें ताने दे रहे हैं, हम तो उस पर ही छोड़ देते, हमसे तो वो भी सुना नहीं जाता, वो क्या कहेंगे, है वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, बस सिर्फ इसलिए कि आप अल्लाह ताला की बात को पूरा करना चाहते हैं, उसके मुताबिक चलना चाहते हैं, इस वजह से वो अगर आपसे नाराज हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो फिर इन लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने पसंद कर लिया था, जिनको अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या क्या खुशखबरियां रखी नहीं आगे, आप तो फिर उनमें से हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी थोड़ी बातों के ताने आपको परेशान करने लगते हैं, और आपको रात को नींद नहीं आती क्योंकि फलाने ये कह दिया, और आपको हर वक्त परेशानी और ये फिक्र लगी रहती है कि वो ये ना कह दें, अभी तो कहा भी नहीं है, लेकिन अभी ये ना कह दें, वो नाराज ना हो जाएं, उनको बुरा ना लग जाए, इसलिए छोड़ो दीने इस्लाम को, तो बाद में तौबा कर लेंगे, इसलिए छोड़ो अल्लाह के हुक्म को, छोड़ो रसूल की बात को, वैसा करो जैसा ये चाहते हैं, चलो उधर को जिधर हवा चलती है, जिधर को जमाना चल रहा है, तो फिर सोच लें कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, और हम कितनी तैयारी कर रहे हैं उस वक्त के लिए जब फितना दिज्जाल नमूदार हो जाएगा, हमारे वक्त में नहीं, शायद हमारी औलादों के, नहीं तो आगे के वक्त में आ जाएगा, मगर जो आसार नजर आ रहे हैं कि बहुत करीबी है, जिस तेजी से लतरकबुन्ना तबकना अन तबक हो रहा है ना, एक के ऊपर एक हालत, एक के ऊपर एक हालत, तो वक्त दूर नहीं है, और आप सब जानते हैं इस वक्त ईमान को मजबूत करने की जरूरत है, और अपनी औलादों को भी ये दिखाने की जरूरत है कि झुकना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उस वक्त हमारे हालात देखें, हम हर जगह कॉम्प्रोमाइज पे लगे हैं, इवन अपने मुसलमानों के भी आगे, आग की खदक गए तो छोड़ दें, हम अपने मुसलमानों के भी आगे कहाँ कहाँ हैं जहां पे हम झुक जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि इनके मूड ना खराब हो जाएं, क्योंकि इनको बुरा ना लग जाए, ये है हमारे ईमान की हालत आज, इतना नीचे जा चुका। और ये कुरान पढ़ने वालों का भी हाल है, बाकियों को तो छोड़ दें आप, बाकी तो क्या हालात चल रहे हैं वो सब जानते हैं, तो सोचें कि उनको उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ ये कि ये मुसलमान है, फिर सिर्फ ये कि अल्लाह पर ईमान रखते हैं, दैट वाज द प्रॉब्लम। और आज भी देखें कोई और प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ ये नहीं देखा जाता लोगों से कि ये क्या पढ़ने बैठ गए, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों ऐसे हिजाब ले लिए, ये क्यों अबाय पहन लिए, ये इन्होंने क्यों ऐसे नहीं करते जैसे हम कर रहे हैं, वो ही फहाशी, वो ही बेहयाई, वो ही झूठ, वो ही सूद, वो ही हरामकारियां, ये क्यों नहीं कर रहे? तो ये तो पागल है, वो इनके पीछे पड़ जाते सिर्फ इसलिए कि वो एक अल्लाह के मानना चाहते। और अल्लाह ताला को मानना सिर्फ ये नहीं है कि जुबान से कह दिया, उनके अंदर वाकई ईमान था, इसीलिए वो कूद भी गए आग में, उन्होंने ये गवारा कर दिया, उन्होंने दीन को छोड़ना गवारा नहीं किया। और अल्लाह वो जो अल अजीज और हमीद है, आप देखें यहां पे और कोई भी और अल्लाह ताला की सिफत आ सकती थी, लेकिन अजीज और हमीद लाया गया, वो उस अल्लाह पर ईमान रखते हैं जो अजीज और हमीद है। क्या मतलब है इसका? अजीज अथॉरिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी रखने वाला, अल्टीमेट पावर रखने वाला, जिसको कोई गालिब जिसके ऊपर नहीं आ सकता, उसका गलबा हर एक के ऊपर। यानी ऐसे नहीं है कि वो जानते नहीं थे कि वो कौन है अल्लाह, उनको पता है कि उसकी मिल्कियत में हर चीज है, वो पूरी अथॉरिटी रखता है, पूरी पावर रखता है। वो ये नहीं कहने वाले थे कि अल्लाह ये हमारे साथ हो गया, तूने हमें बचाया नहीं, और ऐसे नहीं किया, नहीं, वो जानते थे अल्लाह ताला अल अजीज है, उसका इख्तियार चलता है, और अल हमीद है, वो उससे बदजन नहीं हुए थे। ओहो हमें तो थोड़ी सी चीज हो जाए, अल्लाह हाँ तूने हमें ऐसे छोड़ दिया, हाय हाय हम तो ऐसे हो गए, और हमें अल्लाह ताला से गिले शिकवे हो जाते हैं फिर कि अल्लाह ताला ने हमारी फलां वक्त में हमें हमारी मदद नहीं की, फिर तो फिर हमारे साथ ये क्यों गुजरी, फिर उस वक्त अल्लाह ताला कहाँ था जब मेरे साथ ये गुजर रही थी, जब उसके साथ ये हो रहा था, वो अल्लाह ताला को हमीद समझते, तमाम तारीफ वाला हमीद महमूद है, जो जो अपनी जात में तारीफ वाला है। हमीद वो है जो जिसकी जात में इतने कमालात हों कि वो खुद काबिले सताइश है, काबिले हमद है, मुस्तहिक है हर हमद का, इस लायक है। एक होता है ना, एक बंदा लायक नहीं होता, ऐसे ही लोग उसको चढ़ाते जाते हैं, वो इस लायक नहीं है, मगर लोग तारीफों पे तारीफें करने लगे कि अल्लाह ताला इस लायक ही है कि उसकी तारीफ हो, वो इसको डिजर्व करता है, वो इसका मुस्तहिक है। अल्लाह अकबर। तो वो अल अजीज समझते थे उसको कि अल्लाह ताला के पास सारा इख्तियार है, और इन लोगों को भी कैफिर किरदार तक पहुंचाने का इख्तियार है। ये नहीं है कि वो इख्तियार नहीं रखता, ये नहीं कि ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमारा रब कोई कमजोर है, नहीं, वो तो गालिब है, और हमद में शुक्र भी है, तारीफ भी है। वो जानते थे, वो फिर भी आग में कूद के भी वो जानते हैं कि अल्लाह ताला तू तारीफ के लायक है और तेरा शुक्र है, क्योंकि तेरे एहसानात बहुत हैं, हम तो हक ही नहीं अदा कर सकते। सुभान अल्लाह। और आज जरा जरा सी बात पे गिला शिकवा, इवन बीमार भी हो जाए तो गिले, अल्लाह ने मुझे बीमार क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ वैसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हो गया, कितने शिकवे हैं, शिकवे दिलों में भरे हुए हैं, ऊपर से ईमान के दावे हैं। आज इसके ऊपर भी बात होगी आगे इंशाल्लाह। अल्लाह दी लहु मुल्कु समावाती वल अर्द, वो अल्लाह वो आजीज और हमीद कौन है, वो ये जानते थे, यानी ये उनकी उनके दिल की बात है कि वो ये जानते थे कि वो है जिसके पास आसमानों और जमीन की बादशाहत है, अल्लाह वाला कुल्ली शहीन शहीद, और वो गवाह है हर चीज पर, यानी वो हमारे हालात को भी देख रहा है, वो हमारे हालात को जानता है। मुझे जैसे है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो जब फरिश्ता आया, पूछते हैं अल्लाह ताला को पता है, बोला हाँ उसको पता है कि आपको जलाया जाने लगा, तो वो जलाने पे राजी तो मैं जलने पे राजी, वो देख रहा है ना, वो तो खुद गवाह है ना, उसको तो खुद पता है ना, हर चीज पे वो शहीद है, और बादशाहत है उसके पास आसमानों की और जमीन की। तो उस रब पे हम ईमान लाए, उसके बाद इंसान की नजर कितनी ब्रॉड हो जाती है ना, इससे उठ जाती है छोटी छोटी चीजों से, बादशाहत है, मिल्कियत है, इख्तियार है, वो जो चाहे करे, फिर किस चीज बात का डर। तो फिर ये लोग जो मुजरिम हैं, जो आग में जलाने वाले, वो भी ये ना समझें कि वो कहीं बच सकते हैं। और अल्लाह ताला देख रहा है कि जो इन मोमिनों के साथ भी हो रही है, और अल्लाह ताला उनको भी देख रहा है जो इतने संगदिल हैं कि बैठ के तमाशा देख रहे हैं। यानी इससे ज्यादा क्या संगदिली की बात हो सकती है, किसी को इसमें भी मजा आए कि वो ये देखे कि कोई लोग जल रहे हैं। इससे आप अंदाजा करें कि वो कैसे लोग थे। अल्लाह अकबर। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात, वो लोग बेशक जिन्होंने आजमाइश में डाला। फितना क्या है? आजमाइश। और फितना असल में किस चीज को कहते हैं? सोने को जब आग में तापा जाता है और उसका खरा खोटा अलग अलग किया जाता है तो उसको फितना कहते हैं। तो आग में जलाया जाना तो जलाने का भी माना है, और अलग अलग वो कर दिया गया तो उसको प्योर कर दिया गया ना, तो फितने में डाल के खरा खोटा अलग अलग हो जाते हैं। फितना इसीलिए टेस्ट के लिए आता है, आजमाइश के लिए आता है। अल्लाह ताला आजमाइश नहीं डालता है ताकि खरा खोटा अलग हो जाए, और जलाने के लिए भी आ गया। जिन्होंने जलाया मोमिनों को, मर्दों को भी और औरतों को भी, और जिन्होंने आजमाइश में डाला मर्दों को और औरतों को, तो दोनों बातें इसके अंदर आ गई। और मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को दोनों अलग अलग क्यों कहे गए? इसलिए कि मोमिन मर्दों को डिफरेंट तरह से आजमाइश में डालते हैं ये लोग, और औरतों को डिफरेंट तरह से आजमाइश में डालते हैं। औरतों के लिए डिफरेंट तरह की काम किए जाते हैं, मर्दों के लिए डिफरेंट तरह के काम किए जाते हैं। मसलन है कि मर्दों के लिए कोई औरत फितना बन सकती है, और वो उसके जरिए आदमियों के ईमान को यानी उससे उससे महरूम कर देते हैं। ये औरतों के लिए उनका पर्दा हिजाब बन सकता है, मर्दों के लिए उनके कमाई बन सकती है, उनकी जॉब बन सकती है। तो मर्दों और औरतों को डिफरेंट डिफरेंट तरह से जिन्होंने आजमाइश में डाला, ठीक है। और यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ले लें जो वाक्या गुजरा है, तो जिन्होंने जलाया इनको या इनको भी आजमाइश में डाला, थुम्मा लम यतूब, फिर अगर वो तौबा नहीं की उन्होंने। अब देखिए ये बहुत अहम है, लम यतूब सुम्मा लम यतूबु, फिर यानी अल्लाह ताला उनको चांस देता है, चांस देता है। सुम्मा मीना तराखी है, तराखी मतलब है कि डिले है, उसके बाद जैसे हम कह देते हैं ना उसके बाद, फिर का ही तर्जुमा करेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें यानी थोड़ा फा में, फा छोटा है तो इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन सुम्मा में ज्यादा टाइम है। तो ये नहीं कहा गया इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीन वल मुमिनाती फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, ये नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया सुम्मा लम यतूबु, फिर अल्लाह ताला उनको चांस देता है कि वो अपने आप को दुरुस्त कर दें, लेकिन वो फिर भी नहीं करते, तो फिर है उनके पर नहीं उन्होंने तौबा की। इसका मतलब इनके पास भी तौबा का चांस है। जी हाँ, अल्लाह ताला ने अबू जहल को भी तौबा का चांस दिया, अबू लहब को भी तौबा का चांस दिया, लेकिन ना जो फिर भी ना तौबा करें, फिर उनके लिए है अजाब जहन्नम और अजाब हरीक, फिर उनके लिए है वो अजाब हरीक, जलने का, हरका आग लगा देने को कहते हैं। जहन्नुम का अजाब अलग है और आग का अजाब अलग है। एक जहन्नुम में बहुत सारे अजाब भी हैं, जहन्नुम में तरह तरह के अजाब हैं, मसलन प्यास का है, भूख का है, और भी कई तरह के अजाब हैं, जानवर काट रहे हैं उनको, ऐसे किस 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 किस्म के अजाब हैं। जहन्नुम जहनाम से है, जिसका माना है टॉर्चर चैम्बर, टॉर्चर चैम्बर में वो होंगे तो जिसमें तरह तरह के टॉर्चर्स होंगे, और हरीक तो आग में उनको डाल दिया जाएगा। लेकिन इनके लिए आप सोचें कि इनके लिए भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, इनको भी अल्लाह ताला चांस देता है, इनको भी बताया गया कि अभी भी तुम्हारे पास चांस है, इतने घिनौने जुर्म करके भी चांस अल्लाह ताला ने दिया, और ये हर गुनाहगार के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली। ये सुम्मा लम यतूबू ना होता ना, तो फिर तो ये था कि जिन्होंने किया था बस, अब उनके लिए सिवाय जहन्नुम के और कुछ नहीं। लेकिन इससे पता चला कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी है कि वो ऐसों को भी चांस देता है जो मोमिनों को जला रहे हैं, और जिनका कसूर सिर्फ ये है कि वो अल्लाह पर ईमान लाए, उनके लिए भी। तो कोई इस कुरान को पढ़ के तो देखे और देखे कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी है, कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए भी दरवाजा खुला रखा और उनको भी धुतकारा नहीं, أولياء عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. कह दीजिए है मेरे बंधु जो अपनी जानों के ऊपर इसराफ कर चुके, जो हद से बढ़ गए, जिन्होंने जुल्म कर दिया अपनी जानों पर, ला तकना तो मेरा रहमत इल्ला, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। इन अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीया, वो सारे ही गुनाहों को माफ कर देता है, वो माफ करने वाला है। और माफी के लिए कोई शर्त नहीं अल्लाह ताला ने लगाई सिवाय एक शर्त के इंसान उस गुनाह को छोड़ के पशेमान हो जाए, छोड़े उस गुनाह को और पशेमान हो जाए कि मैंने क्यों शर्मिंदा हो, कि मैंने क्यों किया, रिग्रेट करे उसके ऊपर। और वो ये चाहे कि मैं काश मैं इसको ना करता, वो चाहे कि काश वो दिन आ जाए कि मैं दोबारा मुझे चांस दिया जाए, मैं कभी भी ना ये करूं। उसके अंदर ही ऐसी निदामत हो, ऐसी पशेमानी हो, अंदर ही अंदर वो अपने आप को ये सोच रहे मैंने क्यों ऐसा कर दिया, वो निदामत होनी चाहिए। और इंसान उसको छोड़ दे, यानी निदामत इतनी होगी तो छोड़ेगा ही, तो निदामत है ना, तो कभी भी नहीं उसमें दोबारा जाना चाहे। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया तुम अपना सारा माल दोगे तो फिर हर गुनाह के बदले तुम इतने रोजे रखो, हर गुनाह के बदले तुम इतनी नमाजें पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। बस तौबा सच्चे दिल से। तो मुख्तलिफ तरीकों से जिन लोगों ने ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को, ये सब मतलब औरतें भी आजमाई जाएंगी, औरतों के ऊपर भी आजमाइश आएगी, औरतें भी ये ना सोचें कि वो इससे बच जाएंगी, उनको भी तरह तरह की मे भी अजियतें दी जाए, मे भी किसी तरह चाहे जुबान से कोई अजियत दे रहा है, चाहे कोई जुल्म सितम ढा रहा है, चाहे वो कोई हाथ से मार रहा है। औरत कमजोर होती है ना तो वो जल्दी फौरन ही भूल जाती है, वो पता है दज्जाल के पीछे सबसे ज्यादा औरतें होंगी, सबसे ज्यादा औरतें, इसी वजह से जहन्नुम में भी सबसे ज्यादा औरतें ही होंगी। बड़ी जल्दी वो अपना ईमान खो देती हैं। तो अल्लाह अकबर, अब ये सोचे इसको वैसे समझे कि काफिर तो ईमान वालों को फितने में डालते ही हैं, बास जगह पे मुसलमान भी मुसलमानों को आजमाइशों में डालते हैं, मुसलमान भी मुसलमानों से ऐसी बातें निकलवाते हैं कि ये क्या है पहले, फिर उसके बाद तुझे छोड़ेंगे। कहा जाता है सीरिया के अंदर लोगों को इस तरह कहा जाता था। अस्तग़फिरुल्लाह। तो फितने तो आएंगे, आजमाइशें तो आएंगी, और अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जो दूसरों को आजमाइशों में डालते हैं ऐसी कि वो तंग आके अपना दीन ईमान ही खो दें, उनके लिए भी देखो कैसा अजाब रखा है अगर वो तौबा नहीं करते तो। और अजाब जहन्नुम अलग है, अजाब हरीक अलग है। कहा जाता है कि कुफर के लिए अजाब जहन्नुम है और जो उन्होंने फितने में डाला उसके लिए अजाब हरीक है, तो डबल सजा है उनके लिए। और बास कहते हैं कि अजाबुल हरीक जो है एक और जगह जहन्नुम में जो बहुत सख्त है। बास कहते हैं दो तरह की सजाएं हैं उनके लिए, एक आग का अजाब है और एक जमहरीर का अजाब है जो सख्त सर्दी का है, तो यानी उनके लिए डबल अजाब हो गया। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, वो लोग जिन्होंने ईमान लाके साले अमल किए। और याद रखें ईमान और साले अमल दो अलग चीजें नहीं है, ईमान का ही नतीजा है कि इंसान साले अमल करता है, ऐसे नहीं कि ईमान एक अलग चीज और साले अमल तो कहीं नजर आता ही नहीं। बस ईमान ईमान, हम ईमान के तो दावे करते हैं, ईमान के दावे तो मुनाफिकीन ने जितने किए ना, आप सूरह मुनाफिकून में पढ़ भी सकते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया उनकी बातें सुन लो तो इतनी खूबसूरत है कि आप उनकी बातों से मुतासिर हो जाए। तो ईमान के दावे तो करना बहुत आसान है और मुनाफिकीन इसमें सबसे ज्यादा अच्छी तरह ये बात कर पाते थे, तो अगर ये खूबसूरत बातें करने का ही नाम होता ईमान तो फिर तो मुनाफिकीन सबसे ज्यादा जन्नत में जाने वाले होते, लेकिन वो दरकल असफल में होंगे मिनन्नार। तो ईमान और अमले साले अलग चीजें नहीं है, ईमान होगा तो लाजमी है कि अमल आएगा, कैसे हो सकता है इंसान के पास ईमान हो कि एक दिन कयामत का है और वो अमल ही ना कर सके? कैसे हो सकता है कि उसका ईमान हो कि एक अल्लाह है जो मुझे देख रहा है और हर वक्त मुझसे बाखबर है, और वो फिर भी वो काम करे कि शैतान भी सोचे कि मेरे से भी आगे बढ़ गया, फिर भी वो दलेर हो, फिर भी वो उसको कोई फर्क ना पड़े? तो साले अमल ईमान का नतीजा है उनके लिए। लहुम जन्नात, उनके लिए जन्नतें, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, ये बड़ी कामयाबी है। ये कामयाबी फौज वो चीज है कि जो आप चाहते हैं वो मिल जाए, और जिस शर से बचना चाहते हैं, जो मतलूब है ना वो मिल भी जाए जिसकी चाहत है आपको, और शर से बच भी जाए। यानी और ये देखे ना कि हमारा मतमाए नजर क्या है, हमारी ख्वाहिश क्या है कि हम जहन्नुम से बच के जन्नत में जाएं। तो फौज में वो कामयाबी, एक कामयाबी तो ये भी है ना कि भाई ठीक है कामयाबी हो गई, जहन्नुम को चखा फिर उसके बाद जन्नत में गए तो कामयाब हो गए, लेकिन एक है वो कामयाबी जिसको फौज कहते हैं कि जिसके अंदर इंसान जो उसका मतलूब है वो पा ले और जिससे वो बचना चाहता है उससे बच जाए, और ये बड़ी कामयाबी है जिसको अल्लाह ताला ये अता फरमा दे, ये जन्नत जिसमें नहरें बह रही हैं और जहन्नुम से बचा ले। अल्लाह अकबर। तो कामयाबी और नाकामी के यहां पर आपको क्राइटेरिया मिल गए कि कामयाबी तो ये है चाहे साले अमल करने में इंसान को मुश्किल आई लेकिन वो डटा रहा, उसके ऊपर चलता रहा, इस्तकामत से चलता रहा, तो ये वो चीज पालेगा जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, ये कामयाबी है। ये कामयाबी नहीं कि आपने लोगों को राजी कर लिया, ये कामयाबी नहीं है कि सारे आपसे खुश हो रहे हैं और आपकी तारीफें कर रहे हैं, ये कामयाबी नहीं कि आप बहुत मालदार बन गए हैं, ये कामयाबी नहीं है कि आपके ऊंचे ओहदे मिल गए हैं, आपकी जॉब में तरक्की मिल गई है। कामयाबी असल ये है जो फौजुल कबीर है, वो ये है कि इंसान को ये जन्नत का ठिकाना मिल जाए बगैर जहन्नुम देखे, जैसे सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना, ये जो जहन्नुम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो ही कामयाब है। तो लेकिन उसके लिए ईमान और साले अमल जरूरी है। आमाल की कमाई अगर नहीं की इस जिंदगी के अंदर तो इसके बगैर नहीं जन्नत मिल सकती। कहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है कि कुछ भी ना करोगे आप जन्नत में ही जाओगे, क्योंकि आपने मुंह से कलमा जो बोल दिया, ये भी तो कहीं लिखा होना चाहिए ना, वो दिखा तो दे। अगर इंसान को साले अमल के रास्ते में रुकावटें भी आती हैं लेकिन वो चलता रहता है, अगर इंसान को ताने भी सुनते में पड़ते हैं लेकिन वो चलता रहता है, अगर इंसान को मुश्किलें भी आती हैं लेकिन वो चलता रहता है, तो कब तक है? कितनी जिंदगी पालोगे? 60, 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल? उसके बाद तो खत्म हो ही जानी है ना। तो 100 साल की मुश्किल उठा के अगर तुम्हें हमेशा की राहत मिल जाए तो कामयाबी कामयाब हो, ये सौदा नफे का ही है। अब देख लें, हम तो न्यूज सुनते हैं ना और भूल जाते हैं। अब कितनी कितनी हमने न्यूज सुनी, फलां के साथ ऐसे हो गया, उस जगह पे लोगों को जला दिया गया, उस जगह पे, ये एक दफा नहीं दुनिया में हुआ, ये जो जलाए जाने का लोगों के साथ हुआ, ईमान वालों के साथ हुआ, ये एक दफा नहीं हुआ, ये कई दफा हुआ कि ऐसा हुआ है दुनिया के अंदर। लेकिन याद रखें, हम भूल जाते हैं उस न्यूज को पढ़ के या उसको सुन के, लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलता। अल्लाह के यहाँ उनका वो प्रिजर्व होता है उनका अजर, और अल्लाह ताला के यहाँ इनका भी लिख दिया गया जो जिन्होंने लोगों को फितने में डाला था। आप देख ले, वाशी ने हजरत हमजा को शहीद किया लेकिन तौबा कर ली, अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता खुला रखा था। अबू सुफियान सारी जिंदगी दुश्मनी करते रहे लेकिन उसके बाद फतेह मक्का पे मुसलमान हो गए, अल्लाह ताला ने उनके लिए दरवाजा खुला रखा। हजरत इकरमा अबू जहल के बेटे हैं, सारा वक्त मक्की दौर के अंदर उनका किरदार क्या रहा, इस्लाम दुश्मनी का, लेकिन अल्लाह ताला ने जब दरवाजे खुले रखता है तो कोई पता नहीं किस वक्त कौन वापिस पलट है। अल्लाह अकबर। और नहीं कोई पलटता तो दुनिया में जिन्होंने लोगों के लिए आगें जलाई, चाहे एक मानवीय आग लगाई भी हो, ऐसे आग में कोई कूदने को कह दे तो वो नजर आती है, लेकिन कई लोग दुनिया में लोगों की जिंदगियों में आग लगा देते हैं, उनको बेचैन करके, उनको मुश्किल में डाल के, उनको परेशान करके, हर वक्त उनके लिए एक मुसीबत खड़ी रखते हैं। उनकी ये दुनिया की आग खत्म हो जानी है, आखरत की आग कभी नहीं खत्म होनी, वहां पे जलते रहना पड़ेगा, उसकी जलन कभी नहीं खत्म होगी। और इसी तरह ये जो ईमान और साले अमल करके हम ये जितने वक्त में कर रहे हैं ना, अगर आज हम ये मुशक्कत उठा रहे हैं या आज हम इससे गुजर रहे हैं कि हमें कोई मुश्किल आती है इस रास्ते में, तो ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन इसका अजर हमेशा के लिए बाकी रहेगा। इसी तरह गुनाह है, गुनाह की लज्जत थोड़ी देर की है, वो लज्जत आज पालोगे ठीक है, आपको उसमें बड़ा मजा आ जाएगा, दिल करता है ये करने का, वो करने का, वो इसका शौक है, इसकी मेरी खुशी है, फलांग मेरी ये, आज कर लोगे इसका मजा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद क्या है, इसका गुनाह कहाँ तक भुगतना पड़ेगा, उसकी सजा किधर तक भुगतनी पड़ेगी, कहीं कब्र है, कहीं हशर है, कहीं उसके बाद की सजाएं मौत के वक्त से ही शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला भूलता नहीं है, हम भूल जाते हैं, हमने ताने दे के हम भूल गए, लोगों को सता के हम भूल गए, अजियतें दे के हम भूल गए, अल्लाह ताला की डिक्शनरी में कोई भूलने वाली चीज है ही नहीं। इन्ना बतशा रब्बी का लशदीद, याद रखो अल्लाह की जो पकड़ है ना बहुत सख्त है। अब देखिए यहाँ पे बतश कहते हैं जकड़ने को, एक होता पकड़ना और एक होता है जकड़ना, जकड़ने में होती है ना आपको शिद्दत महसूस होती है, कि जकड़ना कैसा होता है, किसी ने जोर से पकड़ लिया, और फिर उसके बाद बख्श इटसेल्फ एक सख्त पकड़ है, उसके ऑन टॉप ऑफ इट ला यकीनन उसने और शिद्दत पैदा कर दी, उसके बाद शदीद का लफ्ज भी है, बहुत शदीद है, बहुत शदीद है। यानी तुम ये ना सोचना कि आज छोड़े जा रहे हैं अल्लाह ताला और आज कोई पकड़ने वाला नहीं, आज कोई सुनने वाला नहीं, बजाहिर तो ऐसे ही लगता है ना कि कोई नहीं जो सुनवाई करे, ये तो राज है, यहाँ पे अंधेर नगरी है, यहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं, मजलूम कराता जा रहा है और उसकी चीखें हैं जो इतनी बुलंद है सारी दुनिया सुन रही है, फिर भी कोई भी उसका पुरसाने हाल नहीं, और बच्चे भूखे बिलक बिलक के मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई कई जगह तो ऐसी हैं जिनका हम कहीं सुनते भी नहीं, ना कोई न्यूज में है ना कोई कहीं है, किसी पता ही नहीं चलता, छुपे भी है ना बातें, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है लेकिन किसी को भी नहीं पता, कोई न्यूज में आने वाली चीज नहीं है, कमजोरों के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, औरतों के साथ हो रहा है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि एक अल्लाह ताला देखने वाला है। फिर ईमान कहाँ गया, किधर है वो ईमान, ढूंढ के लाने से भी नहीं मिलता, किधर है ईमान, जो जो क्लेम था कि एक अल्लाह है, और एक अल्लाह है सिर्फ काफी नहीं, जब अल्लाह ताला को मान लिया कि वो एक रब है, वो एक अल्लाह है, तो वो देखता भी है, सुनता भी है, जानता भी है, बाखबर है, उसकी पकड़ का एहसास खत्म हो गया क्या? वो पकड़ता है तो बहुत शदीद पकड़ता है, वो ढील दे दे तो जब तक चाहे ढील दिए रखे, लेकिन जब वो पकड़ लेता है तो फिर कोई बच के जा नहीं सकता, ना जा उसके तहम्मुल पर कि बड़ बेढब है पकड़ उसकी, डर उसकी देरगिरी से कि है सख्त इंतकाम उसका, उसके तहम्मुल पे ना जाए, अल्लाह ताला का तो हिल्म है ना, ये वो अल हलीम है, उसका हिल्म है कि वो चांस देता है, मौके देता है, फौरन नहीं पकड़ता, पर इंसान धोखा खा जाता है, वो सोचता है कि बस ठीक है अगर आज नहीं मैं पकड़ा गया तो अब तो पकड़ा जाना ही नहीं, मुझे इतनी दफा मैंने कर लिया, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, पर ये चीज उसको दलेर कर देती है, वो भूल जाता है कि जब फिर अल्लाह की पकड़ आती है ना तो वो इतनी सख्त होती है कि फिर कौमों की चीखें निकल गई, अल्लाह ताला फरमाता है, वो कहते हैं उस वक्त वो बोलते हैं, सूरह आराफ शुरू होती है तो ये बात आई कि उस वक्त जब अल्लाह ताला की पकड़ उनके ऊपर आ गई, तब वो बोले, चीख चीख के बोले, हम ही जालिम थे, हम ही जालिम थे, हमने गलत किया। क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, फिर वो छोड़ता नहीं है। फिर कोई कहे कि हाँ हमने जुल्म किया, हम मान जाते हैं कि हमने जुल्म किया, तब कोई फायदा नहीं है मानने का। अल्लाह की पकड़ सख्त है, उसकी शिद्दत से पकड़ने को सोचो, और वो कहाँ से आ जाए ये भी इंसान को नहीं पता चलता। इंसान को पता नहीं चलता शदीद, लेकिन होगी इंटेंसिटी उसकी बता रही है ये। और इसमें अल्लाह ताला का जलाल है, और उनके लिए जो मजलूम है और जो सताए जा रहे हैं उनके लिए तसल्ली है, घबराओ नहीं, अल्लाह की पकड़ है। और वो फिर जब आएगी ना, तो फिर किसी को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इन्नहू हुवा युबदी हुवा युईद, बेशक वो ही है जो पैदा करता है, इब्दा करता है, इब्दा मतलब इनिशिएट करना, पैदा करना, वह युईद और लौटाता है, इआदा करना, इआदे से। ये अब सारी आयात जो है ना, पिछली आयात की ही तफसीर है, कि जब कहा गया ना, ये आयत नंबर 10 की तफसीर ही आप पढ़ रहे हैं 12 में, कि अल्लाह की पकड़ बहुत फिर शक्ति है, बहुत सख्त है। और कुरैश को भी कह दिया गया तुम भी सुन लो, और वो ये अगर आज उसने पैदा किया है तो कल को वो उठाएगा भी, और इस पर कादिर है। उसने पहलों को भी पकड़ा और दोबारा भी वो पकड़ेगा। और अल्लाह ताला दुनिया में चीजों को लाता है और दोबारा इनका आदा भी करता है, दोबारा भी लेकर आ जाएगा। और ये भी माना है इस दुनिया में भी अल्लाह ताला अजाब दे देता है और आखरत में भी उसको इआदा कर देगा। तो ये सारे माने हैं इसके, जिंदा करने के भी माने, सजा देने के भी माने। देखिए कितनी कौमों की सजाएं हुई इसी दुनिया में, वो पकड़े गए ना अपने जरायम पे, वो तो हमने देखा, आखरत को तो देखा नहीं ना अभी, लेकिन इसी से सोच लें कि आखरत में क्या होगा। तो बास बादल मौत की तरफ भी है ये, कि अल्लाह ताला दोबारा खड़ा करेगा, सजाएं देने के ऊपर भी है। वहुवल गफूरुल वदूद, और वो गफूरुल वदूद भी है, गफूर भी है और वदूद भी है। गफरा कहते हैं किसी चीज को कवर कर देना, कंसील कर। अब कंसीलर लगाते हैं ना खवातीन को, तो ज्यादा कंसीलर का होता है, कंसीलर से आप क्या करते हैं, कवर कर देते हैं अपने उन दाग धब्बों को जो चेहरे पे होते हैं। तो अल्लाह ताला गुनाहों को कवर करने वाला है, अल गफूर है, वो कवर कर देता अगर किसी को पता ही ना चले, वरना अल्लाह ताला एक्सपोज कर देना तो दुनिया में भी इंसान किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। वो बड़ी प्यारी बात है सुफियान सौरी की, कि वो फरमाते थे जब उनके शागिर्द उनके साथ साथ चलते थे ना, तो वो फरमाते थे अगर मेरे गुनाहों की बदबू हो ना तो तुम सब मुझे छोड़ के भाग जाओ, लेकिन अल्लाह ताला ने उस तहलुयुब है, वो ढांप लेता है ऐपों को, तो वो ढांप लेगा कयामत के दिन जिन गुनाहों को उसने माफ कर दिया होगा ना, वो लोगों को देखने भी नहीं देगा उनको, कि कोई देखे कि अच्छा। देखिए एक तो ना अल्लाह ताला ने माफ भी कर दिया, लेकिन सबको पता तो चल रहा है कि ये तो इसने किया था ना, इसको फिर माफी मिल गई, लेकिन इसने किया, जैसे अब कोई मिसाल के तौर पे कोई जुर्म एक साबित हो गया है, लेकिन मसलन अदालत ने उसको माफ कर दिया, दुनिया में तो ऐसे नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला माफ कर दे किसी को, और लेकिन उसका जुर्म सबको पता चल रहा है, तो इसने भी कितनी रुसवाई है ना, कितनी बेइज्जती है। तो अल्लाह ताला ऐसा है जो कवर कर देगा, बख्श के कवर भी कर देता है। और सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जब भी एक सिफत के बाद दूसरी सिफत आती है ना, तो उसको समझा करें इस तरह कि अल गफूर है और अल वदूद क्यों आया इसके बाद, गफूर रहीम क्यों नहीं आ गया, रहीम भी तो है ना, लेकिन गफूर अल वदूद आया यहाँ पे। और ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की सिफत है, कि देखें पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंसान जब माफ करते हैं तो कैसे माफ करते हैं। आप जब किसी को माफ कर देते हैं तो बड़ी एक तो मुश्किल से माफ करते हैं, शर्तें भी बांधते हम आइंदा के लिए, तुम ऐसे कहोगे तो ये करोगे तो वो करोगे, तो अब मेरे पैर पड़ो, तो अब मेरे घर आओ, तो अब ऐसे करो, तो अब पहले तो तुम ये करो फिर उसके बाद माफ करेंगे, पहले तुम बताओ तुमने ऐसे क्यों किया था, बहुत सारी चीजें करते। अच्छा फिर अगर माफ कर ही देते हैं ना, तो हमारा हौसला इतना छोटा होता है कि उसके बाद भी हम यही कहते रहते हैं, बस दिल से नहीं निकलती, माफ तो करती है, दिल से नहीं निकलती, दिल से नहीं निकलती, ऐसे बात कहते रहते हैं। तो वो भी हम दिल से निकालना भी कोशिश भी करें तो तब भी कहीं कहीं हमें बस ऐसा होता रहता है कि वो ख्याल आ ही जाता है, और लोगों को बताते रहते हैं, मैंने उसको माफ तो कर दिया लेकिन पता है इसने मेरे साथ बड़ा बुरा किया था। अल्लाह ताला ढांप देता, एक तो वो लोगों को बताएगा नहीं, और ऑन टॉप ऑफ इट वदूद, वुद से वुद मोहब्बत को कहते हैं, और बहुत ज्यादा मोहब्बत को लिए। तो अब ये दोनों नाम साथ क्यों आए, कि अल्लाह ताला मोहब्बत करने वाला है, माफ करके मोहब्बत भी करता है, अल्लाह हू अकबर, माफ भी करता है वो मोहब्बत भी करता है। माफ कर देना वो ही बड़ा मुश्किल काम है, और उससे आगे उसको जिसने गलत किया उसे मोहब्बत भी करना, ये तो बहुत बड़ी बात है जो अल्लाह ताला ही कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाशी ने बहुत दुख दिया था जब हजरत हमजा को शहीद कर दिया था, तो वाशी जब माफी मांगने के लिए आ गए थे, इस्लाम कबूल कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, आपने फरमाया बताओ मेरे चचा को कैसे तुमने शहीद किया, तो जब उन्होंने बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोए, दाढ़ी बारीक तार हो गई आंसुओं से, फरमाया वाशी मेरे सामने ना बैठा करो, मुझे अपने मेरे सामने ना बैठा करो, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आ जाता था। तो आशी जो थे ना वो पीछे बैठते थे और छुप के बैठते थे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर ना मेरे ऊपर पड़ जाए और उनको दुख ना हो। फिर तो माफ कर दिया था लेकिन मोहब्बत करना मुश्किल है। अल्लाह ताला कैसा हमारा रब है कि वो माफ करके फिर मोहब्बत भी करता है। तो फिर इंसान अगर माफी मांगने में देर करे तो बड़ी बदकिस्मती है, और इंसान अगर दलेर हो जाए इस बात पे कि कोई बात नहीं गुनाह कर लूंगा तो फिर माफी मांग, क्या पता कल को मौत आ जाए, क्या पता अल्लाह ताला माफी की तौफीक ही छीन ले, क्या पता उस गुनाह में पड़ने के बाद इंसान को वो गुनाह इतना हल्का लगने लगे कि वो माफी ना मांगने की तरफ आए, क्या पता मौका ही ना मिले, क्या पता वो भूल जाए। तो ऐसे अजीम रब के साथ कभी भी इंसान को नहीं ये सोचना चाहिए, अव्वल तो दलेर होके गुनाह करना ही नहीं चाहिए, लेकिन इंसान है, इंसान से गुनाह भी होते हैं, तो फिर फौरन पलटे वो तौबा की तरफ, और ये समझे कि अल्लाह तू तो गफूर है, तू तो वदूद है, मोहब्बत करने वाला भी है, कहाँ से लाओगे आप कोई ऐसा जो ऐसा हो कि माफ भी करे और फिर मोहब्बत भी करे, कहाँ से ऐसा लाओगे, कोई जात ऐसी नहीं है, ऐसी कामिल नहीं है कोई जात, भुला भी दे सबको, शर्मिंदा भी ना करे, इंसल्ट भी ना करे लोगों को बता के, चर्चा भी ना करे गुनाहों का, बल्कि उनको ढांप भी दे और मोहब्बत भी करने लगे। जैसे एक बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा, अल्लाह ताला पर्दे में उसका हिसाब किताब लेंगे और उसको कहेंगे ये भी तूने किया, ये भी तूने किया, ये भी, वो कहेगा हाँ अल्लाह मैंने ये किया, सारे गुनाह गिनवा देगा, अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने तुझे माफ कर दी, जैसे दुनिया में तेरे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ था, आज मैं तुझे माफ करता हूँ। वो निकलेगा तो लोगों के सामने अपने आमालनामे को दिखाएगा और खुश होगा, और लोगों को नहीं पता होगा कि इसके गुनाह भी थे, अल्लाह ताला ऐसे ढांप देगा उसको। जुल अर्शिल मजीद, वो जुल अर्श है, आप देखे जू बार बार आ रहा है ना, रात भी और जू भी वाला, क्या अर्श वाला, अल मजीद मजद से, ये मजीदू है, इसका मतलब है अर्श वाले की सिफत है, अगर मजीदी होता तो फिर अर्श की सिफत होती, क्योंकि सिफत मौसूफ एक ही एराब रखते, तो जुल अर्शी अल मजीदू, जो मजद कहते हैं बुजुर्गी को, और ये अल्लाह ताला की सिफत है, इसीलिए अल्लाह ताला के नाम में से अल मजीद है, इनका हमीदुम मजीद, हम दुरू शरीफ इसी पे खत्म करते हैं ना, तो उसी से जुल अर्शिल मजीद। तो मजीद वो जात है जो जलाल वाली, जबरूत वाली, अजमत वाली, किबरियाई वाली, कमाल दर्जे तक हो, जिसमें जिस जात में बुजुर्गी भी हो और जो बेहतरीन तारीफ के लायक भी हो और जो करीम भी हो और जिसकी अताएं और बख्शिशें बेशुमार हो, अपने बंदों पे नेमतों के जरिए बहुत ज्यादा एहसानात करने वाला, वो मजीद होता है। तो वो अर्श वाला है, और अर्श अल्लाह ताला की सबसे अजीम मखलूक है। अर्श के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कर्ब की दुआ सिखाई है हमें, उसमें आता है ला इलाहा इल्लल्लाहुल अजीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दी व रब्बुल अर्शिल करीम, कि ये अर्श जो है अजीम और करीम, दो उसकी सिफात यहाँ में बयान की गई। ये दुआ कर्ब है, हर परेशानी, हर कर्ब, हर मुसीबत में ये दुआ काम आने वाली है। इसको दुआए कर्ब कहते हैं। इसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना है, और अर्श अल्लाह ताला के अजीम अर्श की बात है। तो अल्लाह ताला का अर्श बहुत अजीम शय है, बहुत बड़ी शय है अल्लाह ताला का अर्श। उसकी सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मखलूक है अल्लाह ताला की। और अर्श तक तो हम, अर्श तक हम क्या बात कर सकते हैं, हम अर्श को तो समझ ही नहीं सकते कि कितना कितना बड़ा और अजीम होगा। उसको इस वक्त चार फरिश्ते उठाए, में कयामत के दिन आठ उठाए होंगे। तो मैं सिर्फ आपको एक बात बता देती हूँ, उससे ही आप अर्श के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अर्श तो नहीं लेकिन अर्श को उठाने वाले, ठीक है, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते की सिर्फ एक बात बताऊंगी आपको, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अर्श को जो फुट उठाने वाला एक फरिश्ता है, उसके कान की लौ से लेके, ये जहां पे आप अपनी बाली डालते हैं कान में, उससे लेके कंधे तक का फासला हमारा कितना है, एक बालिश्त भी नहीं है, ठीक है, सबसे छोटा फासला ये। इतना फासला 700 साल की मसाफत है, और आप देखें जमीन से पहला आसमान कितना है, 500 साल की मसाफत। इसका मतलब इससे भी ज्यादा, इससे भी 200 साल ऊपर, पहले आसमान से दूसरा भी 500 साल, दूसरे से तीसरा भी 500 साल, सोचे 700 साल की मसाफत, तो सिर्फ उसका ये डिस्टेंस है, तो वो पूरा कितना बड़ा होगा वो फरिश्ता। और वो एक नहीं, वो चार हैं जो अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए हैं। आप सोच लें, अल्लाह ताला के अर्श के सामने उसकी कुर्सी इतनी छोटी है, इतनी छोटी है। अब कुर्सी जो, अब इससे अंदाजा करें कि जो कुर्सी जमीनों आसमान के मुकाबले में, जमीन और आसमान कुर्सी के मुकाबले में, ये कह सकते हैं, हदीस में आता है जमीन और आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे जैसे एक छल्ला सहरा में पड़ा हो, और कुर्सी इतनी छोटी है अर्श के मुकाबले में जैसे एक छल्ला सहरा में पड़ा हो। तो अल्लाह ताला का अर्श कितना अजीम होगा। तो वो अर्श वाला है, और अर्श तख्त को भी, अर्श तख्त के लिए भी आता है लफ्ज ना, अर्श फाल लिमा युरीद, फाल फाइल होता है, एक फाल होता है, फाल में मुबालगा और तकरार है, रेपिटेशन है, वो करने, जिसको हम कहते हैं ना कर गुजरने वाला, सिर्फ करने वाला नहीं, कर गुजरने वाला है। लीमा युरीद, जो वो चाहता है, जो चाहे करे, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी पूछ नहीं सकता, कब चाहे कैसे चाहे। अब कोई इंसान जो है ना, ये कर लो, इनको सजा क्यों नहीं मिल रही, इनके पर पकड़ क्यों नहीं आ रही, अल्लाह ताला मदद क्यों नहीं कर रहा, आलू नहीं मायूरीद, वो जो चाहे करे। यानी अब उसको आपको कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया इसमें मुबालगा है और रेपिटेशन है, अगेन एंड अगेन का माना है, वॉट एवर वेयर एवर विद हु एवर वो चाहे करें। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उन्हों जब बीमारी में थे, मरजुल मौत में, तो लोग सवाल करते थे किसी तबीब को आपने दिखाया, फरमाया हाँ दिखाया, तो लोग पूछते हैं ना अच्छा फिर उसने क्या कहा, तो लोगों ने पूछा क्या क्या कहा फिर उसने, तो फरमाया उसने जवाब दिया इन्नी फ़ालुल लिमा युरीद, कि मैं जो चाहे करूं, यानी अल्लाह मेरा तबीब है, वो जो चाहे करे। हल अता का हदीसुल जुनूद, क्या तुम्हारे पास खबर आई है लश्करों की, आई है आपके पास, जो फिराउन और समूद, फिरौन के और समूद के, इनके बड़े बड़े लश्कर थे, फिरौन के तो ऐसे लश्कर थे, आगे आप सूरह फजर में पढ़ेंगे, तो इतने बड़े लश्करों वालों की खबर आई है। यह जुनूद की खबर क्यों खास तौर पे बात की गई, क्योंकि अरबों के लिए ना लश्कर कोई, अगर हमला आवर होने वाला होता था तो उनके पास कोई जराए नहीं थे जहां से जाकर पता करते। वो खबर आती थी कि एक लश्कर आ पहुंच जाए तो उनके लिए बहुत स्केरी बात होती थी कि कोई लश्कर ऊपर आ गया, खड़ा हो गया हमारे सर पे। तो उनकी पता है कितनी नफरी थी, कितने बड़े बड़े लश्कर थे फिरौन के और समूद के। यानी उनसे ही सीखो तुम कि कुरैश मक्का को कहा जा रहा है, तुम देखो तो सही कि वो अपने आप को कितनी बड़ी चीज समझते थे, और वो बड़े काफी थे भी दुनिया में। अल्लाह ताला ने सूरह अनआम में फरमाया है ना कि क्या तुम्हारे पास नहीं आए, क्या तुमने नहीं देखा, अलम यरौ कब अहलकना मिन कब्लिहिम मिन करनिम मक्कन्नाहुम फिल अर्धि मा लम नुमक्किन लकुम, तुमने नहीं देखा वो लोग जिनको हमने बसाया था इसी जमीन के ऊपर, वो तुमसे ज्यादा थे, उनके ऊपर हमने कितनी फरावानियां की हुई थी, फिर अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया, उनकी जगह और लोगों को ले आया। तो तुमने इनसे वो नहीं सीखा सबक। अल्लाह अकबर, बलिल्लदीन कफरू फी तकजीब, लेकिन जो काफिर है फी तकजीब, तकजीब में तो युकजीबून नहीं कहा गया यहाँ पे, जैसे पहले कहा गया था, फी तकजीब कहा गया। फी में यानी गर्क क्या, उनके अंदर अंदर है, उसके अंदर तकजीब के अंदर, जब कोई डूब गया हो किसी चीज के अंदर उसका निकलना मुश्किल होता है, वो बस यही झुटलाते रहना, उनका ये नहीं कि उनको समझ नहीं आई, बस उनकी अकड़ ऐसी है, वो झुटला झुटलाते रहे। तो पिछली कौमों के साथ ये गुजरा था, लेकिन तुम भी फिर यही करोगे। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, और अल्लाह ताला मिन वराइहिम, वरा पीछे को कहते हैं, लेकिन ये ऐसा वर्ड है जिसका ऑपोजिट माना भी है, अरबी में ऐसे अल्फाज हैं जिनके ऑपोजिट माने होते हैं, पीछे तो आगे भी। तो वो अल्लाह ताला उनके पीछे और आगे, यानी इसका मतलब हर तरफ से मुहीत अहाता किए हुए, जो इसने पीछे और आगे से कर लिया तो फिर हर तरफ से। तुम अल्लाह ताला को ये ना समझो कि अल्लाह ताला को पता नहीं है, उसकी ताकत ऐसी है, उसने हर तरफ से घेरा हुआ है। देखे ना, जब किसी मुजरिम को कह दिया जाए तुम्हें घेर लिया गया, अब वो घर के अंदर बेशक बैठा हुआ है, तुम्हारे घर को घेरे में ले लिया गया, तो इसका मतलब तुम बच के नहीं जा सकते। ऐसे ही अब जैसे एक मछली के लिए कांटा डाल दिया जाए, उसने कांटा उसके मुंह में, वो समझ रही मैं आजाद हूं, आजाद वो तब तक है जिस वक्त तक कांटा शिकारी खींच ना ले, वरना वो बिल्कुल उसके यानी काबू में आ चुकी है, वो अपने आप को आजाद समझती। इसी तरह इन मुजरिमों का हाल है, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तो इनको घेरा हुआ है, घेरे में लिया हुआ है उनको, आगे से भी पीछे से भी हर तरफ से, यानी ये बच नहीं यानी सकते, तो फिर कहाँ जाएंगे। ये आज जो दुनिया में नजर आ रहा है ना, ऐसे लोगों को आप देखते हैं, आप सोचते हैं अल्लाह ताला ये इतनी इतना जुल्म कर रहे हैं, ऐसा ऐसे काम कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं होता, तो ये ना सोचे कि बस ये इनको छुट्टी मिली हुई है तो हमेशा की छुट्टी है। ये उसके उस वक्त के मुसलमानों के लिए जो कुरैश के जुल्म और सितम को सह रहे थे, उनके लिए भी एक तसल्ली है और आज तक एक तसल्ली है। जो जो ऐसे जरायम करेगा, जो जो ये जुल्म करेगा, जो शुरू से आप देख ले बात को, तो जिन्होंने चाहे वो असहाबुल उखदूद है, चाहे वो कुरैश मक्का है, चाहे वो आज के लोग हैं, जो भी तारीख में जितने भी आए ऐसे जालिम जिन्होंने ईमान वालों को फितने में डाला। और ये देखें आप, एक बात यहाँ पे रह गई कि इन लदीना फतनु लदीना आमनू नहीं कहा गया, क्योंकि अल्लदीना आमनू तो वो हो सकते हैं जो वो फेल है ना, जो ईमान लाए, और मोमिन कहा, मोमिन वो होता है जो जब नाउन आ जाता है ना तो वो पक्की पक्की बात है, वो फिर यानी आप वो इससे फिरने वाले नहीं, ईमान उनके अंदर गाढ़ चुका है, उनके लिए है कि जो ईमान में मजबूत है। आमन वाले तो हो सकता है कि डामा डोल हो जाए। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को घेरे में लिया, बल हुआ कुरान मजीद, बल्कि वो कुरान मजीद है, आखिर में आके एक चीज बता दी गई कि किस तरह इंसान हिदायत पा सकता है, किस तरह इंसान इस्तकामत पा सकता है, किस तरह से ईमान वाले तसल्ली पा सकते हैं, किस तरह से वो लोग जो ये जरायम करने वाले हैं वो अगर है हिदायत की तरफ आना चाहें तो वो आ सकते हैं। बल हुआ कुरान मजीद, जिसकी ये तकजीब कर रहे हैं, ये तो कुरान है जो मजीद है। अब हम कहते हैं ना कुरान मजीद, तो ये कुरान में ही इसका नाम कुरान मजीद है, अल्लाह ताला ने दिया ये इसका नाम, हमने खुद नहीं रखा, कुरान मजीद। तो इसको कहना इस तरह दुरुस्त है, वही बात, अल्लाह ताला भी अल मजीद है और कुरान भी मजीद है, और इसका माना मैं आपको बता चुकी, बहुत अजमत वाला, बहुत शान वाला। इसीलिए इस कुरान की अजमत को हमें भी पहचानना चाहिए, ना सिर्फ ये कि इसको हम वैसे अहमियत दे कि हम इसको सीखे समझे, क्योंकि ये बड़ी शान वाला है जो इसके साथ लग जाएगा। अब देखिए किसी ऑनरेबल, किसी बहुत बड़ा बादशाह है, कोई बहुत बड़ा वजीर है, कोई बड़ा दुनिया का कोई आला मकाम वाला है, उसके साथ लगना, उसको आपको अपने एक छोटी सी भी जॉब दे दे अपने, हाँ तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, और आप कहेंगे जी मुझे व्हाइट हाउस में जॉब मिली। आप चाहे व्हाइट हाउस में क्लर्क की जॉब हो, लेकिन आप कहते हैं मेरे जो बहुत एक टाइपिस्ट की जॉब है, छोटी सी यानी जॉब उसने वो छोटा सा ही काम दे दिया, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, आपके लिए कहना ही बहुत बड़ा होता है कि मेरी व्हाइट हाउस में जॉब है। सोचे जो अल्लाह ताला के इस कलाम के साथ, जाहिर है अल्लाह ताला अल मजीद है, तो ये उसका कलाम है ना, उसका कलाम भी अल मजीद है, वो भी शान वाला है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है, कोई इंसान का थोड़ी है, वो भी अजमत वाला है जैसे अल्लाह ताला अजमत वाला है। तो इसके साथ कोई जुड़ जाए तो उसकी शान भी कितनी बुलंद हो जाएगी, उसके लिए भी कितने फखर का बायस है कि मुझे यहाँ पे नौकरी नहीं कह सकते, मगर मुझे यहाँ पर वक्त लगाने का मौका मिल गया, मेरी जिंदगी इसके साथ गुजर रही है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि मुझे मेरे रब ने इस काबिल समझ लिया कि मुझे यहाँ की जॉब दे दे। वो किसी को किसी काबिल समझता है तो अपने यहाँ रिक्रूट करता है ना, तो किसी को किसी काबिल समझा गया तो उसको कुरान करीम जैसी दौलत दे दी गई, फी लौहे महफूज, ये लौहे महफूज पे है, वो लौहे महफूज जो अल्लाह ताला के पास सातवें आसमान पे है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके मुकर्रब फरिश्ते इसके पास होते हैं, और इसके बारे में आता है कि लौह सफेद मोती की है, इसका तूल आसमानों जमीन के बराबर है, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने सब कुछ लिख दिया, कुरान भी लिखा हुआ है, और जो कुछ होना था कयामत तक के लिए, जमीनों आसमान की तखलीक से भी 50,000 ईयर्स पहले अल्लाह ताला ने इसके अंदर लिख दिया सारों की किस्मतें। तो अल्लाह ताला ने लौहे महफूज को सफेद मोती से पैदा किया, इसके सफ़े सुर्ख याकूत की है, इसका कलम नूर है, और अल्लाह ताला हर दिन कई मरतबा इसको देखता है। यहां तक इस सूरत की तफसीर मुकम्मल हुई, देखते हैं इसकी तिलावत।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورة الطارق مکی سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کا نام اس کی پہلی آیت میں الطارق، جو روشن ستارے کو کہتے ہیں، اور یہ ستارہ بہت واضح بہت ظاہر ستارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں لمبی لمبی سورتیں بقرہ اور نساء پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم والسماء والطارق پڑھو اور والشمس وضحاها پڑھو؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت آپ اپنی نمازوں میں ایسی جیسے آپ عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ظہر اور عصر میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس طرح سے اس کو یاد رکھیے گا کہ بروج اور طارق ہم نے ظہر اور عصر میں پڑھنی ہے. اس سورت کے اندر اس کے مضامین وہی جو مکی سورتوں کے ہیں، قیامت کا بیان ہے، لوگوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بیان ہے، اور خاص طور پہ رات کو جو طلوع ہونے والا ستارہ ہے طارق، اس کی بات ہے اور قرآن مجید کی بات ہے. تو دیکھتے ہیں اس سورت کو. یہ سورت کا تھیم جو ہے نا، سیکرٹس ہے، یعنی اگر آپ کہیں ہر چیز چھپی بھی، تارہ بھی چھپا ہوتا ہے دن میں، رات میں ظاہر ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. آپ اس کو عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو روایت بتائی ہے. تو دیکھتے ہیں سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء، قسم ہے آسمان کی. یاد رکھیے السماء اور سماوات میں تھوڑا سا فرق ہے. سما اور سماوات ہم ایک طرح سے ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ سما کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو اوپر ہے، اس کے اندر ستارے سیارے اور سورج چاند بھی آ گیا، اور اس کے اندر فرشتے بھی آ گئے، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ابو ہیں نا، اوپر ہیں، وہ ساری السماء میں. اور جب ہم سماوات کہتے ہیں تو یہ جو آسمان ہے، پہلا آسمان، کیونکہ سمو سے ہے نا، اسما سمو سے ہے، سمو جو ہے وہ بلندی کے لیے آتا ہے، تو بلندی پہ اوپر یعنی جتنی چیزیں. لیکن ہاں سما دنیا کہیں گے تو پھر آسمان، یہ پہلا آسمان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم اشد خلقا ام السما، تو یہ جتنی اوپر چیزیں ہیں، اور اب تو بہت ساری چیزیں انسان کو پتہ ہیں کہ کیا کیا چیزیں اوپر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، وہ طارق، اور طارق کی، طارق تو رو قاف سے ہے. طارق کہتے ہیں پیٹنے کو، کھٹکھٹانے کو، پہلے طریق راستے کو بھی کہتے تھے نا، کیونکہ لوگ اس کے پر، پہلے زمانے میں سڑکیں تو نہیں بنتی تھی، لوگ چل چل کے جس راستے پہ چلتے جاتے تھے وہ راستہ بن جاتا تھا، تو وہ کوٹتے تھے نا اپنے پیروں سے اس کو، تو اس کو طریق کہتے ہیں. تو طارق یہاں پہ وہ جو رات کو آنے والا، اچھا دستک کے لیے بھی طارق کا لفظ آنے لگا، کیونکہ وہ بھی پیٹتے ہیں، اور رات کے وقت جو مسافر ہوتا تھا اس کو طارق کہتے تھے، کیونکہ وہ رات کو آتا تھا اور دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، اور رات کو اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو سوچے تاریکی میں بالکل خاموشی ہے، اس وقت کتنی زور سے آواز آتی ہے. تو یہ کیا مطلب آپ کو پتا چلا؟ جو رات کو آئے اور زوردار آواز نوک، ٹھیک ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے الطارق. اب میں نے آپ کو ادراکا اور یدریکا کا بتایا تھا نا، کہ ادراکا جب آئے گا تو اس کے بعد کوئی چیز بتائی جائے گی، لیکن یدریکا کے بعد وہ بتایا بھی نہیں جائے گا کہ وہ چیز کیا ہے، مگر ادراکا کے بعد بھی جب وہ بتائی جائے گی نا، تو وہ بھی پوری طرح آپ اس کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، وہ بھی اس کا ایک کلو ہی ہوگا، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ پوری طرح سمجھ نہیں سکتے. لیکن جب یدریکا کہا جائے گا نا، तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं आप समझ सकते, इसलिए इसको बताया ही नहीं जाता। ठीक है, तो तुम्हें क्या पता वो तारिक क्या है? अल्लाह अकबर, तो इसका मतलब कोई बहुत ही बड़ी चीज है जिसको इंसान समझ ही नहीं सकता। अन्नजम मुस्ताकिब, वो है सितारा जो साकिब है, साकिब जो रोशन और चमकदार। एक्चुअली सपा कहते हैं तारे जो सुराख करती हो जो चीज, तो तारा भी उसकी रोशनी भी देखे ना रात को आसमान में सुराख करती भी जमीन तक पहुंचती है। तो तारे क्या है हमें यहां से पता चला, वो तारे की तरफ इशारा है, वो घर पे आकर नॉक करने वाले की तरफ नहीं, या रात को सफर करने वाले की तरफ नहीं, इसकी तरफ नहीं है कि आप वो समझने लगो कि वो वाला तारे है। ये अतारिक जो नज मुस्ताकिब है, अब इतनी अमेजिंग बात है ना, ये 1400 साल पहले ये हमें बात बताई गई, लेकिन आज भी अगर आप अभी नहीं लेकिन बाद में आप देखिएगा द नॉकिंग स्टार, तो आपको पता चलेगा कि सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर के साइंसदानों ने अब एक सितारे की जो आवाज थी ना उसको वो करने की कोशिश की कि हम उसको मतलब जाने, तो उसको जब उन्होंने उसकी आवाज को देखा तो वो क्या थी, जैसे कोई नॉक कर रहा हो, थ्रॉबिंग एक साउंड, जोर जोर से नॉक करते हैं। और सुबहान अल्लाह कुरान ने तब बताया ऐसा एक सितारा है। अल्लाह अकबर। तो सितारे जो थे ना अरबों की जिंदगी में बहुत एक अहमियत रखते थे, इसलिए कि वो लोग रात को सफर करते थे और अपना सफर जो है ना सितारों को देख के करते थे, क्योंकि उससे वो गाइडेंस उनको मिलती थी, जीपीएस तो था नहीं, तो इसी के एंगल्स को देखते थे, उससे पता चलता था उनको कि रास्ता क्या है। और सितारों को सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, अब जब साइंस बताती है ना और आप सितारों के बारे में जानते हैं, तो आप हक्का बक्का रह जाते हैं कि या अल्लाह ये क्या तेरी मखलूक है, कितनी बड़ी है और कितनी दूर है, और तूने इसके जरिए आसमाने दुनिया को सजाया हुआ। जैसे हम सूरह मुल्क में पढ़ चुके, आसमाने दुनिया पे हैं ये, अभी ये उससे बियॉन्ड नहीं है। और फिर वो कहा जाता है वो इतने 1000 लाइट ईयर्स दूर है, इतने थाउजेंड, तो वो इंसान के जहन में भी नहीं आ सकता, जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है उस स्पीड से ट्रेवल किया जाए तो इतने हजारों साल लगेंगे, और अभी तक लाइट से ट्रेवल करने की इंसान के अंदर ताकत नहीं है, वो अभी तक नहीं लाइट की स्पीड पे ट्रेवल कर सका। तो सोचे कि वो सितारे कितनी कितनी दूर हैं और कितने ह्यूज हैं, कितने मैसिव हैं, और वो सितारे अल्लाह ताला की एक वो मखलूक है जो भी गवाह है, आसमान की भी कसम और तारिक की भी कसम खाई गई, और ये सितारे भी इंसान को वॉच कर रहे हैं। पिछली हमने उसमें पढ़ा था ना शाहिदी व मशहूद, तो अल्लाह अकबर के इंसान अमेज्ड रह जाता है कि ये अल्लाह ताला ने क्या क्या मखलूक, और वल्लाहु आलम कि ये तारा कैसा है, वमा अदराक बतारिक, तुम्हें क्या पता कि वो तारिक क्या है और रात को आने वाला क्या है, इंसान नहीं समझ सकता। ये कसम खाई गई तारे की और आसमान की, खा के अब जवाबे कसम क्या है? इन कुल्लू नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज, कोई नफ्स ऐसा नहीं है मगर उसके ऊपर एक हाफिज है, एक उसके ऊपर निगेबान है, एक उसके ऊपर हिफाजत करने वाला मौजूद है। अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा हाफिज तो अल्लाह ताला ही है, मगर उसके अलावा अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला फल्लाहु खैरुन हाफिजन फरमाया ना सूरह यूसुफ में, अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। लेकिन एक और कौल भी है कि हिफाजत करने वाले फरिश्ते भी तो हैं, हिफाजत करने वाले ऐसे फरिश्ते हैं जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से इंसान की हिफाजत करते हैं, और वो क्या है फरिश्ते? वो निगेबान फरिश्ते, वो मुहाफिज फरिश्ते हैं, कि वो इंसान की हिफाजत के ऊपर लगे रहते हैं। और ये कहा जाता है कि इंसान की हिफाजत जब से वो पैदा होते हैं मौत तक उसकी हिफाजत करते हैं। ये फरिश्ते वो हैं जो कि उसकी कान, उसके हाथ, उसके पैर, हर तरफ से उसकी हिफाजत कर रहे हैं, बॉडी गार्ड्स कह लें। और ये एक फरिश्ता नहीं है, 100 से ऊपर फरिश्ते हैं जो एक इंसान की हिफाजत के लिए लगे, सिर्फ आंख की हिफाजत के लिए 7 फरिश्ते मुतय्यन मुकर्रर हैं। तो इंसान जब सोचे कि अल्लाह ताला ने चाहे वो मोमिन है चाहे काफिर है, अल्लाह ताला को मानता है या नहीं मानता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी भी हिफाजत का इंतजाम किया, सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर इंसान की हिफाजत ना की जाए तो वो, कहा जाता है कि इतना कुछ है इस कायनात में, जिन्नात ही हैं मसलन, जिन्नात इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो इस वजह से इंसान के पास आके उसको वो चाहे तो चीर के उसको तिक्का बोटी कर दे, लेकिन वो क्यों नहीं आते उसके पास, इन गार्डियन एंजल्स की वजह से। इसका कॉन्सेप्ट दूसरे मजाबी में गार्डियन एंजल्स कहते हैं, और वाकई इंसान के साथ मुहाफिज फरिश्ते हैं। अल्लाह अकबर, ये जो हर वक्त इंसान की हिफाजत में, लेकिन देखिए हम तो सोचते हैं ना कि कोई किसी से खुश हो तो उसकी हिफाजत करे, जो बिल्कुल बेकार लोग हैं इनकी हिफाजत की भी क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो अल्लाह के नाफरमान हैं और ये तो ऐसे हैं और ये तो बदकार हैं और ये तो गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है, तब ये अला रब्बी कुमार तकतीबा, इस किस अल्लाह ताला की नेमत को तुम झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने कितनी कितने जरासीम, कितने वायरसेस, कितने क्या क्या कुछ है इस हमारे इर्द गिर्द की माहौल में, क्या क्या चीजें हैं। जब तक इंसान की तकदीर में कोई चीज ना लिखी हो तब तक वो उसको नहीं पहुंचती, और ये फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते। मसलन है कि एक इंसान ने कहीं से गिर पड़ा, अब वो फरिश्ते उसकी हिफाजत पे लगे हुए हैं, उसको कोई चोट ना लगे, उसको बचा ले वहां से। कभी थोड़ी सी जगह से गिरता है इंसान, उसकी टांग टूट जाती, कभी बड़ी जगह से भी गिरता है, उसको कुछ भी नहीं होता। तो जो तकदीर में लिखी होती है वो फिर फरिश्ते पीछे हट जाते हैं, फिर वो उसकी हिफाजत नहीं करते, फिर उसको जाने देते हैं, लेकिन जो तकदीर में नहीं लिखी होती तो उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला ने देखे कैसा हमारी डिफेंस मैकेनिज्म हमारा एक फरिश्तों के जरिए भी रखा है। अल्लाह अकबर। और फिर इंसान फिर उस रब को ना आ, आ, पुकारे और ना उसको माने और ना उसकी शुक्रगुजारी करे, उसकी एहसान मंदी करे, तो कितनी बड़ी नाशुक्री है। बड़े बड़े बादशाह यहाँ पे बॉडीगार्ड रखते हैं, उनको कितना पे करना पड़ता है उनको, और अल्लाह ताला ने बगैर किसी पेमेंट के लिए वे इंसान के लिए बॉडीगार्ड्स रखती है, और इंसान इस चीज का एहसास भी नहीं करता। अल्लाह अकबर। तो इस चीज को इंसान अगर सोचे तो इस पे ही अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी में वो झुका रहे कि अल्लाह तूने मेरे लिए इतना बड़ा इंतजाम कर दिया। फिर दूसरा हाफिज का मतलब क्या है, हिफाजत करने वाले यानी उसके आमाल की हिफाजत करने वाले। इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, वो भी तो निगरान है ना, हिफाजत करने वाले निगरान हस्तियां उसके साथ अल्लाह ताला ने रखनी, कि मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन आतीब, कोई बात नहीं इंसान की जुबान से निकलती मगर उसके साथ एक हाजिर बाश मौजूद है जो कि लिख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है हर चीज को, उन्हें आंख के इशारे तक को रिकॉर्ड कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, किधर जा रहा है, हर एक के साथ। अल्लाह हू अकबर। ये इंसान देखें कहाँ बच के जाए, इंसान कहता है ना मुझे प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी कैसे उसको मिले, ये जमीन भी शाहिद और ये फरिश्ते भी शाहिद उसके ऊपर, और ये भी निगेमानी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं बल्कि, तो ये मुहाफिज फरिश्ते उसके साथ लगे हुए। तो अल्लाह अकबर। तो तुम ये देखो कि सिर्फ तारों को देख के और उनकी ब्यूटी को देखकर और उसी को तारीफें ना करो कितने खूबसूरत सितारे हैं, बल्कि ये भी सोचो एक एक नफ्स ऐसा है, कितने बिलियंस ऑफ पीपल हैं, हर एक के साथ मुहाफिज है, किसके साथ नहीं है, इन कुल्लू नफ्स है, नहीं कोई नफ्स इससे ज्यादा उस बात की ताकीद इससे ज्यादा क्या होगी कि कोई है ही नहीं जिसके साथ ना हो, हर एक के साथ है, यानी हर एक के साथ। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने इनको भी गवाह बना दिया, तो इंसान इनसे ही कम से कम शर्म कर लिया करे। अब ये सिर्फ उससे उस वक्त अलग होते हैं जब वो बरहना होता है, या जब वो टॉयलेट में होता है, या जब वो हम बिस्तरी कर रहा हो, तब वो सिर्फ अलग होते। फल यंदुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, बस चाहिए इसके बाद कि इंसान गौर तो करे किस चीज के ऊपर। यंदुर चाहिए कि देखे, देखे मतलब ये नहीं कि बस देख रहा है, कि बल्कि गौर करे कि वो किस चीज से पैदा किया गया, कहां से आया, अपने अंदर झांक के तो देखे, अपने अपने राज को तो पहले तलाश करे, कैसे पैदा हुआ इंसान। अब ये बात कह के इंसान के साथ देखिए मुहाफिज फरिश्ते भी, 160 मुहाफिज फरिश्ते भी लगे हुए जो हिफाजत कर रहे हैं, और आफतों से हिफाजत कर रहे हैं, शर से हिफाजत कर रहे हैं, और आमाल लिखने वाले भी जो हर वक्त 24/7 ना सोते हैं, ना वो गफलत करते हैं, ना वो किसी वक्त अपने पेन रख के ब्रेक लेते हैं, वो भी लगे हुए हैं। अब उसके बाद काव्य, इंसान को चाहिए, फल यंजुरिल इंसान, इंसान को चाहिए कि गौर करे। अगर वो तारीख पे गौर करके उसको नहीं पा सकता, जब उस पे तो नहीं, तुम समझ, क्योंकि वमा अदरा का मत तारीख, उस पे तो नहीं कर सकते, मगर इंसान अपने वजूद पे तो गौर कर ले कि वो कहां से आया। तुम्हारे लिए इतना बड़ा अल्लाह ताला ने निजाम चलाया हुआ, इतने फरिश्ते तुम्हारे साथ लगाए हुए, कोई हिफाजत में लगे हैं तो कोई लिखने में लगे हुए हैं। तुम सोचो अपनी तखलीक पे तो सोचो कि तुम कहां से आए हो। ऐसे ही तो नहीं ये हिफाजत के लिए रखे हुए, ऐसे ही तो नहीं ये गवाहियां देने के लिए या ये लिखने के लिए रखे हुए, कोई तो मकसद होगा तुम्हारे आने का भी दुनिया में। अल्लाह की कुदरत को तुम पहचानते नहीं हो। अगर ये तुम्हें गवाहियां कुछ नहीं सिखाती, अगर इससे तुम नहीं सबक लेते कि हर एक के साथ एक निगहबान, वो ये जो दो करामन कातिबीन बैठे हुए हैं और हिफाजत वाले बैठे हुए इतने सारे, इससे तुम्हें नहीं समझ आती, तो तुम एटलीस्ट अपने आप में गौर करके ही अल्लाह ताला को पहचान लो कि तुम किस चीज से पैदा गए। खुलिका, खुलिका खलक अल्लाह नहीं, यहाँ पे कहा गया कि अल्लाह ने पैदा किया, खुलिका। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको राज वाली बातें यानी सीक्रेट्स वाली बातें का इसमें ज्यादा होगा, अल्लाह ताला का नाम नहीं आएगा यहाँ पे। जैसे अब तारिक की बात आई, वो भी एक सितारा है जो दिन के वक्त नहीं नजर आता, फिर ये हाफिज फरिश्ते भी नजर नहीं आते, फिर इसी तरह इंसान किससे पैदा हुआ ये नहीं यहाँ पे बताया गया। खुलिका मजहूल है, मिम्मा इंदाफिक, इसलिए कि अगर कहा जाए अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया तो वो जो रब को मानता ही नहीं है, उसने तो बात सुननी ही नहीं है, तो चलो तुम इस चीज को छोड़ दो, तुम यही देख लो कि तुम्हें किसने पैदा किया। तुम्हें पैदा किया गया पानी से, मा इन पानी से, दाफिक दाल फा काफ से, वो जो गश करता है, जो पुश करके निकलता है, और ऐसे ही नुतफे से इंसान को पैदा किया गया, उछलने वाला। ये कमजोरी के लिए बताया गया कि तू, तेरे पास तो इतनी भी ताकत नहीं कि इस पानी को कंट्रोल कर ले, वो भी उछल के निकलता है। एक जगह माए महीन बताया गया, ऐसा कि मतलब इंसान उससे घिन खाता है, वो ड्रॉप जो बिल्कुल हकीर है, कि देखो अल्लाह ताला ने कैसे उससे पैदा कर दिया। तुम अल्लाह अकबर उस रब को नहीं मानते जिसने तुम्हें इस हकीर पानी से पैदा किया, और हर एक इंसान ये तो मानता है ना कि वो किस चीज से पैदा हुआ, ये तो उसको पता है ना। अच्छा अब देखिए, मिम्मा नहीं कहा गया, वरना मिम्मा था, मिन से और मा जो, किस चीज से कि पैदा किया गया, इसमें अलिफ नहीं है, क्यों? मिम्मा बस ये कहा गया, क्यों अलिफ क्यों निकाल दिया गया, ये बताने के लिए। आपको मैंने बताया था ना, हरूफ कम हो तो माना भी कम हो जाता है, इसलिए कि इंसान जान ले के वो इतनी हकीर और छोटी सी चीज से पैदा किया गया, ये अलिफ को भी गिरा दिया गया, मिम्मा खुलिक। इसी से सीख लो। और अब ये हर इंसान को कहा गया, चाहे वो काफिर है चाहे वो मुसलमान है, मगर उसको देखना चाहिए। पहले हमें क्या कहा गया, हम किस चीज के ऊपर गौर करें पीछे, सूरतों में और भी किस चीज पे गौर करने को कहा गया ना, खाने पे, अपने खाने पे गौर करो। उसे पिछले पारों में क्या कहा गया, अलयंजुर इंसान, या इंसान को, यानी यहां पे इस चीज को कि अपनी तखलीक, उससे पीछे अपने गिजा, उससे पीछे अपने अमल को, कि अपने अमल के ऊपर गौर करो। खुलिका मिम्मा इन दाफिक, जो टपकने वाला है, जो उछलने वाला है, उससे पैदा किया गया तुझे। यखरुजु मिम बैनि सुल्बि वत्तरा, एक जो निकलता है, सुल्ब कहते हैं ये पीछे जो स्पाइन है, बैकबोन, और तराइब, तराबा से सीने की हड्डियों को, जिसको कहेंगे आप रिब्स, कॉलर बोन भी कहा गया, इसमें से निकलता है। इसकी बहुत सारी तावीलें की गई कि कब कहाँ से इंसान का ये निकलता है, जो स्पर्म बनता है वो कहाँ से निकलता है, तो बहुत सी की गई, लेकिन वो साइंटिफिक उसके अंदर हम नहीं जाएंगे कि ये फ्लूड कहाँ से आता है, मगर इसका सफर यहीं से शुरू होता है। इस पानी के सफर की आगाज यहीं से होता है, बनता यहीं से है, फिर उसके बाद नीचे आता है। तो देखिए, पहले रोशनी की बात की, जो सितारे से निकलती है और वो जमीन तक पहुंचती है तारक, और उसके बाद अब इंसान के सफर की बात है कि उसका सफर कहाँ से शुरू हुआ। एक वो सफर था जो मिलियंस मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर था, वहां से रोशनी तारे से जमीन पे आ रही, और एक सफर है जो बहुत कम फासले का है, यहाँ से यहाँ तक। अगर तुम्हें वो नहीं सफर समझ आता तो अपने अंदर ही झांक के ये सफर देख लो। और अब तो इंसान और ज्यादा देख सकता है, और ज्यादा जान सकता है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, इंसान को अब समझ आ सकती है। अल्लाहु अकबर, इन्नहु अला रजईही लकादिर, इन्नहु बेशक वो, ऊपर अला ऊपर, रजईही रजू करना होता है ना, लौटना, उसके लौटाने पर, लकादिर अलबत्ता कादिर है, यकीनन कादिर है, क्योंकि वो हुआ युबदी हुआ युईद है, वो अदा कर सकता है, किसके लौटाने पे कादिर है। एक तो ये कि इस इंसान को लौटाने पे कादिर, हु की जमीर किस तरफ जा रही है, अल्लाह ताला की तरफ, आला ऊपर, रजाई ही इसके लौटाने पे कादिर है, किसके, एक तो इंसान, जो इंसान बना इससे, जिसकी पहले बात हुई, पलयंजुर इंसान, और दूसरी बात यानी कैसे कादिर है कि अल्लाह ताला उठाएगा कयामत के दिन। दूसरी क्या बात है कि इस नुतफे को लौटाने पर कादिर है, इस नुतफे को कैसे अल्लाह ताला लौटाएगा। देखें, ये नुतफा जो है, ये रहमे मादर में जब जाता है और उसके बाद वहां से निकलता है, कैसे था, डेड था, इसके वापस लाने पर कादिर है, ये तो गया रहमे मादर में, वापस लौटा तो कैसे, एक इंसान की सूरत में, तो डेड से अल्लाह ताला ने जिंदगी को पैदा किया। इसी तरह कब्र में डेड जाएंगे जमीन की गोद के अंदर, और दोबारा निकलेंगे तो जिंदा होंगे अल्लाह ताला इसको। वो तो गशिंग वाटर था ना, माइन दाफिक था, और वो जब गया तो किस सूरत में था, और निकला तो कैसे जिंदगी थी उसमें। अल्लाह हू अकबर। तो अल्लाह ताला उस कादिर है, इसको वापस लौटा दे, और इसी के इंसान को भी, बादल मौत भी यहां से पता चलता है कि उठा दे इंसान को, क्योंकि कैसे वो मुर्दा होगा और अल्लाह ताला उसको जिंदा कर दे, दोनों एक ही बात है। और मैंने आपको ये जो हदीस पहले सुनाई है कि अल्लाह ताला ने रहमे मादर पे भी फरिश्ते को मुकरर किया होता है, वहां पे भी उसकी हिफाजत कर रहा होता है फरिश्ता। यौम तुबला सराइर, जिस दिन तुबला, बला से ये है, पहले हमने पढ़ा है ना बला, बला के हम पहले पढ़ चुके हैं, ला यबलुवन्नकुम बिशयइन मिनल खौफ, तो शुरू से हम पढ़ रहे हैं बला का माना क्या, जांचना, असल में होता है बला मुसीबत को भी कहते हैं ना हम, तो जब इम्तिहान होता है वो भी एक इंसान के लिए मुसीबत ही हो जाता है, तो इम्तिहान लिया जाएगा या जांचा जाएगा, पड़ताल की जाएगी, टेस्ट किया जाएगा असरार पोशीदा राजों को, पोशीदा बातों को। मैंने आपको बताया कि सीक्रेट्स की इसमें बात है, और इंसान की सीक्रेट्स को सिर्फ वहुस्सिला मा फिस सुदूर है ना, आगे आएगा कि सीक्रेट्स को सीनों से निकाला जाएगा, सिर्फ निकाला नहीं जाएगा, तुबला उनको जांच पड़ताल उनकी की जाएगी, उनको पूरी तरह देखा जाएगा। जैसे आपके सामान को कहते हैं खोलें अपना सामान, ये पॉकेट भी खोले, ये जिप भी खोले, ये यहां से भी खोले, सारे सामान को उधेड़ के रख देते हैं कि बाहर निकालो सब कुछ। अब पोशीदा राज सराइर, सराइर वो राज, सिर की जमा, वो राज जो इंसान ने बहुत छुपा के रखे हैं, वो राज जो उसके अंदर है, तो उनको पुल आउट किया जाएगा और एग्जामिन किया जाएगा, इंसान एक्सपोज हो जाएगा। अब आप देखें कि अल्लाह अकबर, इस दुनिया में तो बहुत सारे राज राज ही रह जाते, जैसे हमने अभी बात की ना कि किसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या किसके साथ बीत रही है, बहुत सारे राज हैं जो इस दुनिया में कभी भी सामने नहीं आते। कई दफा आप मैस ग्रेव्स की बात पढ़ते हैं कि कहाँ से कोई मैस ग्रेव्स मिली, उनके अंदर हजारों लोग दफन किए, अल्लाह जाने वो कौन कौन लोग थे, क्या किसने किया, क्या हुआ, हॉरिबल स्टोरीज आपके सामने आती हैं। तो आप, वो तो राज है ना, अब वो राज उस दिन उनकी जांच होगी। अल्लाह अकबर। इसी तरह और भी दिलों के अंदर क्या है, दिलों में नियतें होती हैं, दिलों में हसद होते हैं, दिलों में कीने होते हैं, दिलों में मोहब्बतें होती हैं, दिलों में शौक होते हैं, हर चीज दिल से पहले आती है, फिर उसके बाद जाहिर अमल में आती है ना। तो हम समझते हैं हमेशा कि पता नहीं जाहिरी अमाल का हिसाब होगा, नहीं, जो दिलों में छुपे हुए राज हैं उनकी भी जांच पड़ताल होगी, अकीदा क्या है इंसान का वो भी पता चल जाएगा, जो छुप के किए हुए हैं चीजें वो भी पता चल जाएंगी। सारायर सिर्फ दिलों की बातें नहीं, छुप के सदका भी किया, रोजा भी छुपा हुआ रखा था, वो भी सब आएगा। तो दिलों को सबसे ज्यादा तो सीक्रेट दिल में होती है ना, उनको चेक किया जाएगा। अब दिलों की चेकिंग करो, अच्छा कुछ सामान है आप नहीं चाहते कि ये खोला जाए, कब, जिस वक्त आपको होता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं पकड़ी जाऊं, तो आप कहते हैं कि चुपके से ही निकल जाए, लेकिन अल्लाह के यहाँ चुपके से कोई निकल नहीं सकेगा, क्योंकि दिल, अल्लाह के दिल भी दिखाओ, दिल भी खोले जाएंगे। हमारे दुनिया के अंदर तो लोग हमारे एक्शंस को देख के हमें जज करते हैं ना, कि हम लोग कैसे हैं, कोई समझ लेता है कि हम बड़े नेक हैं, कोई समझ लेता है कि बुरे हैं, कोई समझ लेता है कुछ, लेकिन असल हम वो हैं जो हमारे दिल में हैं। मुनाफिकीन को भी उस वक्त मुसलमानों की तरह क्यों ट्रीट किया जाता था, इसलिए कि उनके एक्शंस मुसलमानों वाले ही थे, अगर दिल में मुनाफिकत थी, मुनाफिकत भी दिल में होती, तो ज्यादा फिक्र किसकी होनी चाहिए, दिल के अमाल की, दिल में क्या छुपा हुआ है, जाहिर में वही निकलेगा और जरूर निकलेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे मेरा दिल तो बहुत अच्छा है, मेरे अमाल पे ना जाओ, नहीं, दिल में जो होता है वो ही अमाल में आता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता दिल कुछ है और अमल कोई और जा रहा है। तो इंसान अपने दिल की बातों को जांचे पर परखे इस दुनिया में, इससे पहले कि वो दिन आए जहां पे ये सारी चीजें बाहर लाई जाएंगी, और फिर इंसान को पता चलेगा कि कभी कभी इंसान अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है, कह रहा होता है नहीं मैं तो बड़ी नेक नियति से ये काम कर रही हूं, मैं तो अल्लाह की खातिर कर रही हूं, लेकिन उसके दिल के अंदर छुपी होती है वो गर्ज कि मैं शोहरत पा जाऊं, वो गर्ज कि मुझे लोग अच्छा समझे, वो गर्ज कि लोग मेरी तारीफें करें। अल्लाह अकबर। वो तुबल सरायर उस दिन इनको जांचा जाएगा, और ये बहुत जरूरी है कि इंसान अपने दिल पे नजर रखे। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक दूसरे सहाबा से नमाज और रोजे की वजह से आगे नहीं निकले, कि दूसरे सहाबा के नमाज रोजे कम थे और इनके ज्यादा थे, नहीं, दूसरे सहाबा भी नमाज रोजों में बहुत थे, बल्कि जो ईमान उनके दिल में था उससे आगे निकले। ईमान भी दिल में होता है ना। इबादत तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, मगर दिल में ईमान कितना है वो चीज है जो आपको आगे लेकर जाती है, वो चीज है जो आपको दूसरों से मुमताज करती है। उनके दिल में ही फिर कहीं गिल है, कहीं कीने हैं, कहीं गलत अकीदे हैं। अकीदे की भी सफाई दिल से ही होती है कि इंसान अपने दिल में अपना अकीदा दुरुस्त करे। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, तो उस दिन कोई कुव्वत नहीं होगी और ना ही कोई नासिर होगा। कुव्वत और नासिर दो तो क्यों चीजें कही गई? इसलिए कि देखिए, जब इंसान मुसीबत में फंसता है ना, तो सबसे पहले तो वो अपनी कुव्वत यूज करने की कोशिश करता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ यूज करूं, अपना सारा जोर लगाता है। अगर वो अपना जोर ना लगा सके और अपने आप को समझे कि मेरे से तो नहीं ये काम हो सकेगा, फिर वो क्या ढूंढता है? मददगार, कोई इधर उधर मिल जाए, कोई मुझे बचा ले, कोई कुछ कर ले। तो दुनिया में तो इंसान अपनी भी पावर इस्तेमाल करता है और लोगों से भी मदद ले सकता है। जैसे पिछले लोगों ने जुनूद रखे हुए थे अपने, और उनके पास आर्मीज थी जो फिरौन और समूद के पास थी, लेकिन आखरत में कोई ना पावर होगी, पावरलेस होगा इंसान, क्योंकि अल्लाह ताला मालिक योम दीन। पावरलेस होगा, बिल्कुल पावरलेस, हत्ता कि अपने आप को ढांपने तक की भी पावर नहीं होगी कि अपने कपड़े ही पहन ले, अपने पैरों में जूते ही पहन ले। बिल्कुल पावरलेस, खाली हाथ, और ना इतनी स्ट्रेंथ होगी कि किसी से मुकाबले कर ले, और ना ही कोई नासिर होगा। दोनों चीजों की नफी कर दी गई, यानी किसी चीज पे भरोसा करके ना बैठ जाना। उस दिन कितनी तुम कमजोरी की और बेबसी की हालत में होगे सोच तो लो, जिस दिन तुबल सराय रोंगे। वस्समा इदात रज, और कसम है आसमान की दात वाला, रज पलटने, रुजू से है ना, लौटना पलटना। अब दोबारा कसम खाई गई, पहली कसम इंसान के ऊपर खाई गई कि ये इंसान तेरे साथ मुहाफिज है, दूसरी कसम कुरान के ऊपर खाई गई है। तो पहली कसम में क्या, जात रज किसकी इस कसम खाई है? आसमान जो पलटने वाला है, यानी आसमान की सिफत क्या है कि वो पलटने वाला, यानी उसके ऊपर से बारिश होती है ना आसमान से, और वो बारिश भी पलट पलट के आती है, बारिश भी ऊपर होती है ना समा, इसीलिए वो वाला आसमान ही जो समावात वाला है वो नहीं, बस समा, और कसम है आसमान की जो बारिश वाला है, ये समझे, ये मुराद इससे बारिश ही मुफस्सरीन ने ली है, क्योंकि इसकी आगे एक कनेक्शन बनता है जिसपे कसम खाई गई है। वल अर्द, और जमीन की जो के सदा वाली है, जो फटने वाली है, सद क्रैक को कहते हैं, और ऐसी चीज का क्रैक होना जो सख्त हो, तो वो बंजर जमीन भी क्रैक हो जाती है जब बारिश बरसती है। आपको पता है वो बंजर जमीन क्रैक होती है और फिर उसके अंदर से फल फूल निकलते। इन्नहु लकौलुन फसल, बेशक ये एक फसल कौल है। फसल कौल मतलब क्या, एक बात है, बेशक वो एक बात है जो फैसला कुन है, फसल फैसले से, यानी ये दो कस्में खा के ये कहा गया कि ये कलाम पाक कौल फसल है। पहले तो कस्मों के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है? तो देखे, बारिश के साथ कुरान करीम को तशबीह दी गई है दूसरी जगहों पे भी कुरान में, कि जो आसमान से बारिश बरसती है जमीन के ऊपर, उससे फिर जमीन फटती है और उसके अंदर से फसलें निकलती हैं, लहलहाने लगती हैं, सब्जा हर तरफ हो जाता है। इसी तरह वही की भी बारिश होती है जो दिलों पे होती है। देखिए ना, कलामे पाक, ये जो कुराने मजीद है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पे उतरा था, ये जहनों पे नहीं, दिलों पे ही अगर आप इसको लेंगे तो असर भी होगा, और फिर दिलों से ही फिर वो आगे अमल फिर फूटते हैं, क्योंकि अभी हमने जैसे बात की यौमतुल्ला सराइर में, कि इंसान का अमल भी फिर वही होता है जैसे उसका दिल होता है। देखिए, आप कहते हैं ना मुझे शौक है ये करने का, या मुझे मेरा दिल कर रहा था ये करने का, तो वो दिल चाहता ही है तो इंसान कोई अमल कर सकता है। तो वो जो इंसान के दिल पे जब वही की बारिश बरसी तो फिर वो फूटते हैं वो अमल, जो सब्जे की तरह है, जो हरियाली की तरह है, जो हर तरफ ग्रीनरी कर देते हैं, बहार आ जाती है। लिहाजा इसका मतलब है कि एक तो दिल पे कुरान को लेने की जरूरत सिर्फ ये इस तरह से नहीं होती कि इंसान तर्जमे रट ले, इंसान बस नंबर ले ले और इंसान ग्रेजुएट हो जाए, बल्कि अगर आपका दिल उसके ऊपर ये बारिश नहीं बरसी और दिल फटा नहीं और उससे सब्जा नहीं निकला आपकी जिंदगी में, आमाल के जरिए एक रौनक नहीं आई, बहार नहीं आई, तो इसका मतलब है दिल की जमीन जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए कि जैसे हमें हदीस से पता चलता है कि तीन तरह के लोग हैं जो कुरान की वही को लेते हैं, कैसे कि एक तो वो लेते हैं ना जो कि उस जमीन की तरह है ना, जो जमीन इतनी फर्टाइल है, इतनी जरखेज है कि उसके ऊपर जब बारिश बरसती है तो उससे सब्जा भी निकलता है, लोग भी फायदा उठाते हैं और वो जमीन भी हरी भरी होती है। दूसरे वो जमीन है जिसके ऊपर पानी बरसता है, तो वो जमीन जो है वो थोड़ी सख्त होती है तो वो पानी को ठहरा लेती है अपने पास, तो वो खुद तो नहीं उसके अंदर जज्ब हुआ लेकिन इर्द गिर्द वालों ने उससे फायदा उठाया कि वहां से पानी ले जाते। और तीसरी वो जमीन है जो ना तो पानी ठहराती है और ना ही उसके अंदर सब्जा उगता है क्योंकि वो है ही खराब जमीन। तो अब इसी तरह इंसानों का भी हाल है, कुछ इंसान वो हैं जो वही लेते हैं और वो खुद भी अमल में लेकर आते हैं और दूसरों को भी फायदा देते हैं, कुछ है जो उनके अपना अमल तो इतना नहीं बदलता लेकिन लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग फायदा ले लेते हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं है, ना उन्होंने खुद अमल करना ना किसी तक पहुंचाना। तो ये इंसान के साथ ये कुरान की तशबीह बारिश के साथ बहुत अच्छी तरह हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और क्योंकि हम बारिश को रोज देखते हैं कि बारिश कैसे बरसती है और क्या उसके यानी आगे समरात उससे निकलते हैं और कैसे जमीन होती है और किस तरह की जमीन क्या उगाती है, उसी तरह हम अपने दिल को भी देख लें कि हमारे दिल की जमीन कैसी है, क्योंकि हम शक कुरान में नहीं कर सकते कि बारिश में कोई मसला था, बारिश तो प्योर ही होती है, ये जमीनें मुख्तलिफ होती हैं जो किस तरह से लेती हैं उस बारिश को। तो फरमाया कि ये कसम खा के और आसमान की जो बारिश बरसाने वाला और जमीन की जो फटने वाली है और वो फूल पौधे उगाने वाली है, कि ये कुरान औले फसल है, ये कुरान वो है जो फैसला कर देता है हक और बातिल में, फैसला कर देता है नेकी और बदी में, फैसला कर देता है झूठ और सच में, फैसला कर देता है क्या हक है और क्या ना हक है उसमें, फैसला कर देता है नेक और बद, सब अलग अलग हो जाते हैं, तमीज कर देता है। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं कुरान पे के पास आया और मुझे नहीं समझ आई और मुझे तो पता ही नहीं चला कि हक क्या और बातिल क्या। यानी अगर आपको जानना है ना कि हक क्या और बातिल क्या, तो कुरान के पास आओ, क्योंकि ये है ही कौले फसल, कुरान से समझो, कुरान से रहनुमाई लो, आपको रास्ता पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। और वमा हुआ बिल हजल, और वह माँ और नहीं हुआ वो कौन कौले फसल यानी कुरान, बिल हजल, हजल कहते हैं जिस जो कुछ प्रोड्यूस ना करे, जिसका कोई नतीजा ना निकले, यानी बेफायदा, जो चीज का नतीजा ना निकले तो बेफायदा है ना, यानी ये बेफायदा कलाम नहीं है, ये कोई अम्यूजमेंट नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि बेफायदा सी चीज हो, ये वो चीज नहीं है कि जिसका कोई फायदा ना हो, ये तो इल्मे नाफे है जो दुनिया में भी नफा देता है और आखरत में भी नफा देता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसको बेफायदा चीज समझते, नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं समझते, हमारा तो ईमान है इस पे, लेकिन हम जुबान से ऐसे कहते हैं, अगर हम किसी चीज को फायदा मंद समझते हैं तो वो तो हम इस्तेमाल में लाते हैं। आप देखें जिन चीजों को आप बेकार समझते हैं उनको तो आप पीछे रखते हैं, कहीं कहीं आपकी क्लोजेट में भी पीछे पड़ी होंगी, कहीं आपके घर में भी पीछे पड़ी होंगी, इसका कोई फायदा ही नहीं। लेकिन जिन चीजों से आप समझते हैं कि ये यूजफुल है, फायदामंद है, उसको आप इस्तेमाल भी करते हैं, उसको आगे भी रखते हैं, ये भी अगर ताक में पड़ा हुआ है, ये भी अगर आपके हाथों में आता ही नहीं, इसका मतलब आप उसको बेफायदा ही समझते हैं ना, मतलब आप नहीं समझते कि इसका कोई मेरी जिंदगी में कोई नफा है मुझे। तो वमा हुआ बिल हजल, ये बेफायदा बात नहीं, कि तुम इसे ऐसे ही बेइत्तनाई बरसो बरतो और उसको एक साइड पे रखो। इधर उधर की बात नहीं, ये अम्यूजमेंट नहीं है, ये कोई हंसी दिल लगी की बात नहीं है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया इस चीज को, यानी इंसान ऐसा ना ले कि बस सुना और उठ के चल पड़े, जैसे कि कोई एक जोक्स कहीं सुनते हैं आप, कहीं एंटरटेनमेंट सुनते हैं, या कहीं कॉमेडी सुनते हैं, या कहीं और कोई बातें सुनते हैं, या कोई ड्रामा देखते हैं, तो उसके बाद उठ के बस चल पड़ते हैं और कहते हैं अच्छा बड़ा मजा आया आज की किस्त देख के, और उसके बाद थोड़ा उसका कोई असर हमारी जिंदगी पे होता। तो कुरान ऐसी तफरी वाली चीज नहीं है कि हम इसको पढ़ के सुन के और उसके बाद कपड़ा झाड़ के कहे अच्छा दर्स था आज, और फिर हमारी जिंदगी पे कोई असर ही ना हो। इन्नहुम यकीदूना कईदा, बेशक वो चाल चल रहे हैं। कईद कहते हैं चाल को, कईद मकर से मुख्तलिफ है, मकर में धोखा भी होता है ठीक है, और कईद प्लॉट करना, कईदा एक चाल, व अकीदु कईदा और एक चाल मैं भी चल रहा हूं। यहां पे भी अल्लाह ताला का नाम नहीं आया देखे, बल्कि ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये सीक्रेट्स वाली सूरत है, तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर इन्नहुम यकीदुना कईदा वो चाल चल रहे हैं, यानी ये काफिर चालें चल रहे हैं और एक चाल मैं भी चल रहा हूं। फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, तो आप ढील दीजिए काफिरों को, ढील देना इनको रुवैदा, अमहिल पहले माहिल, माहिल ढील दे काफिरों को, अमहिल फिर ढील दे, ये बाबे इफ़ाल से है। वो देखिए अब है दोनों अमर के सीगे, लेकिन बाप फर्क होगा। अमहिल में ताकीद है मुबालगा, ढील दे इनको रुवैदा, रुवैदा औद से रुवैदा, तो शॉर्ट टाइम के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए, यानी जल्दी ना कीजिए। अगर ये जितनी भी चालें चल लें, जितना भी आपके लिए मुखालफत के लिए प्रोपोगेंडा कर लें, लेकिन एक चाल इनकी है और एक अल्लाह ताला की चाल है। अब अल्लाह ताला को माकिद नहीं आप कह सकते, किस लिए कि ये अल्लाह ताला का नाम नहीं है, बल्कि ये उन्होंने जो किया वैसे ही अल्लाह ताला ने उनके साथ किया, ये कहने का मतलब है। तो जो वो चाल चल रहे हैं वो ये ना समझें कि उनकी चालें कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला भी एक उनके साथ वैसी ही चाल चलेगा। और आप देखें कि उन्होंने चालें चली, बहुत चालें चली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की भी साजिश की और इस दीन को मिटाने की भी साजिश की, प्रोपोगेंडास भी किए, लेकिन कुछ भी कामयाब ना हुआ। अल्लाह ताला की भी एक चाल है, वो तो देखें आके गारे सौर में ऊपर खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि इतने 100 ऊंट उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की कीमत लगा दी थी, लेकिन क्या हुआ, सुराका का घोड़ा भी वो उसके पैर ही जमीन में चले गए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश ही नहीं कर सके। क्या बात थी, उनके कान नहीं काम करते थे, आंखें नहीं काम करती थी, वो गार के मुंह के ऊपर खड़े हुए थे, उनको नजर नहीं आ रहा था कि वो अपने, अबू बकर सिद्दीक सर फरमाते हैं कि वो अपने पैरों की तरफ भी देखते तो हम नजर आ जाते, अंधे तो नहीं थे ना वो तो जैसे भेड़िए की तरह इनकी ताक में थे, तो फिर उनको क्यों ना नजर आया कि एक चाल अल्लाह ताला की होती है। वो घर को घेरा डाल के खड़े हुए थे, उनको क्यों नहीं नजर आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल रहे, तो चालें चलते रहे, अल्लाह ताला को इसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि जिसके साथ अल्लाह ताला होता है ना, फिर अल्लाह ताला जब अपनी चाल चलता है तो फिर उनको समझ ही नहीं आती। तो आप क्या करें, आप इनको ढील दें, आप इनको मोहलत दें, यानी इनके मामले में जल्दी ना करें, वो तो गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐ नबी आप ना ये सोचे कि ये जल्दी इनको इनका अंजाम मिल जाए, तो इनके ना, यानी आपको पता चल गया कि ना इनके खिलाफ को बदुआएं करें, ना इनके लिए कोई जल्दी मांगे जहन्नुम मांग ले, ना इनके लिए कोई अजाब मांग ले, ना कि कह दे कि आप कयामत जल्दी आ जाए, बल्कि इनको टाइम दे, थोड़ा सा टाइम, जो कि टाइम थोड़ा ही है और थोड़ा ही टाइम था कि उसके बाद फिर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में एक फुरकान हो गया, फर्क हो गया और फतह मिली मुसलमानों को, फिर मक्का फतह हो गया, फिर अरब मुसलमान हो गया। तो थोड़ी देर है ना, मैंने हमेशा के लिए ढील नहीं देनी, थोड़ी देर है। तो सुनते हैं इस आयत, इस सूरह की तिलावत।
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. पिछली सूरत में हमने पढ़ा कि इनको मोहलत दीजिए, थोड़ी सी मोहलत। मोहलत देने से क्या फायदा होता है? देखें, जब मोहलत दी गई तो मुसलमानों ने रिएक्ट नहीं किया मक्का में, तो कितने सारे लोगों के दिल मुसलमानों की तरफ मायल हो गए। एक साइलेंट मेजोरिटी थी जो ये सोच रही थी कि ये बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, खब्बाब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुसलमानों को सिर्फ इस बात पे कि ये कलमा पढ़ने वाले हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है। जैसे अभी अबी तालिब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूर थे, तो उस वक्त भी यही काफिर कह रहे थे कि क्यों इनको ये सजा दी जा रही। तो हम नहीं समझ रहे होते कि जो मोहलत का टाइम होता है उसके अंदर भी खैर होती है। अल्लाह ताला फ़ालु लिमा युरीद है, तो कोई भी जल्दी ना करे कि बस जल्दी से फैसला हो जाना चाहिए। ये इंसान जल्दबाज होता है तो वो सोचता है कि जल्दी फैसला हो जाए, लेकिन उसमें भी खैर होती है, उसमें भी अल्लाह ताला का प्लान होता है जो हम नहीं जान पाते। अब आगे सूरह आला। सूरह आला जो है ये मुसब्बिहात में से है, क्योंकि हम पहले मुसब्बिहात पढ़ चुके हैं, सब्बह लिल्लाही और युसब्बिहु लिल्लाही। ये सात मुसब्बिहात सूरतें ना, तीन सब्बह से शुरू होती, तीन युसब्बिहु से शुरू होती, और ये है सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। इसमें सब्बिह है, इसमें अमर का सीगा, वो माजी और मुजारे में थी। अब ये सात मुसब्बिहात जो कहलाती हैं, इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे प्यारी ये वाली सूरत सूरह आला है। और इसके बारे में ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको और सूरह गाशिया को, यानी अगली जो सूरत आ रही है, इसको जुमे और ईदैन में और नमाज इस्तस्का में पढ़ते थे, और इसको वितर में भी पढ़ते थे, यानी इस वाली सूरत को वितर की पहली रकत में इसको पढ़ते थे, फिर दूसरी में सूरह काफिरून और तीसरी में सूरह इखलास। तो आप भी यही कोशिश कीजिए, और इसी तरह ईदैन और जुमे में आप देखें क्या खास बात है कि उनमें भी यही पढ़ी जाती थी, इसलिए कि उनमें भी जहरी की रात होती है ना, तो जब सारा मजमा सुन रहा है और बहुत बड़ा मजमा जमा होता है जुमे पे भी और ईदैन पे भी, बड़ी पे भी और छोटी ईद पे भी, ईदैन इसलिए कह रहे, तो उनमें इन सूरतों के अंदर तस्कीर है, रिमाइंडर्स हैं। और जो रिमाइंडर आज इंशाल्लाह आप देखेंगे और फिर सूरह गाशिया भी हम देखेंगे, तो ये रिमाइंडर्स इतने ज्यादा इंसान को, यानी एक मुख्तसिर सूरतें और याद दिहानी बहुत बड़ी है। और जो भी कुरानी रिमाइंडर्स हैं वो इसके अंदर समझ लें कि उनकी समरी आ गई। तो ये सूरत, पिछली सूरत में मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला का नाम नहीं है, और अब ये सूरत मक्की सूरत ही है। और ये सूरत कैसे शुरू हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, سبح اسم ربك الأعلى، سبح تسبیح کیجئے اسم نام کی، ربی کا، اپنے رب کی، الاعلیٰ، جو سب سے بلند ہے، سب سے بلند۔ تسبیح کا معنی ایک آخری دفعہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی صورت اس سے نہیں شروع ہوگی۔ سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو، اور ایسا تیرنا کہ اوپر فلوٹ کرے، نیچے نہ جائے۔ تو اس سے تسبیح کا کیا تعلق ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات کاملہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بھی شان ہے، وہ نیچے نہیں ہونی چاہیے، وہ اوپر ہی رہنی چاہیے۔ جب تسبیح ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہم ایسی پرفیکشن بیان کرتے ہیں کہ وہ نیچے نہ ہو، نہ اس کا نام، نہ اس کی صفات میں سے کوئی بات۔ تو تسبیح کسی شے کو اس کے مقام پہ برقرار رکھنا اور گرنے نہ دینا۔ تو اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ کہ اللہ کی جو شان ہے، بلند اور برتر ہے، اس شان کو کبھی گھٹنے نہ دینا، نہ مخلوق کے برابر لانا، نہ مخلوق کو اس کے برابر کرنا، ورنہ اس سے بھی اس کی شان گھٹ جائے گی، کہ مخلوق کو اس کے برابر کر دیا یا اس کو نیچے کر دیا۔ تو ایسی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ نہ کی جائے، ایسی اس کے ساتھ نہ مطلب کنیکٹ کی جائے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو۔ اسی وجہ سے ہم آسان لفظوں میں تسبیح کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، ہر قسم کی فلو سے، ہر قسم کی احتیاج سے، ہر قسم کے نقص سے، کمزوری سے، ہر قسم کی، اس سے اس کو پاک قرار دینا، یعنی اس کی شان جس ہے، جس جگہ پہ، جب میں نے آپ کو تیرنے سے بتایا نا، یعنی اس کو وہاں پہ برقرار رکھنا جو اس کا مقام ہے، وہاں سے نیچے نہ آنے دینا۔ تو سباحہ کہتے ہیں کوئی چیز تیزی سے حرکت کرے اور اپنی سطح کو برقرار رکھے، اسی لیے تیرنے سے نا فلوٹ کرنا اوپر، یہ نیچے نہیں ڈوبنے دینا، اوپر اوپر رہنا۔ اور کلو فی فلک یسبحون، یعنی ہر ایک اپنے فلک کے اندر تیر رہا ہے، ہر سیارے ستارے کے لیے آتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے شان کے لائق نہ ہو، وہ چیز سے پاک ہے، اس سارے تصورات سے پاک ہے وہ، اور اس میں پھر شرک سے پاکی بھی آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آیا کہ سبح اسم ربک، نام کی تسبیح بیان کرو، نام کی، رب کے، اپنے رب کے نام کی، جو اعلیٰ ہے، اللہ تعالی کا نام، یعنی اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو گئی نا، کیونکہ اس کا نام اس کی تسبیح ہے، اور وہ اعلیٰ ہے، وہ ذات سب سے اوپر ہے۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا؟ کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بھی تسبیح بیان کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی اس طرح نہ لیا جائے جیسے کہ مطلب کہ نام کی بے ادبی ہو، یا وہ نام اس ذات کے لائق نہیں ہے اور اپنی طور پہ کوئی نام رکھ دیا جائے، اس طرح سے نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف اسی نام سے پکارا جائے جو کوئی قرآن میں بتا دیا، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ان کے علاوہ ناموں سے اللہ تعالیٰ کو نہ پکارا جائے۔ اور کیوں؟ یہ بھی پھر اس کو اس کی شان کو گھٹانا ہے اس کے نام کی۔ تو جیسے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ میاں، تو میاں کہنا کوئی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ میاں شوہر کو کہا جاتا تھا۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں اللہ سائیں، سائیں بھی فقیر کو کہتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق شان نہیں ہے کہ ایسے نام لیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ رب العزت، اور اس طرح سے اس کی کسی ایٹریبیوٹ کے ساتھ، اس کی کسی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار لیں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ خود سے آپ کوئی نام اس کے لیے رکھیں۔ تو چاہے وہ جتنی بھی آپ محبت سے، یا جتنے بھی آپ سمجھتے ہو کہ اس نام میں پرفیکشن ہے، لیکن اس میں پرفیکشن نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہم نے ہی بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کے نام کو جو اس نے بتائے ہیں، اسی طرح اس کو رکھا جائے اور اسی طرح اس کو لیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام اللہ کے نام پہ نہ رکھا جائے، جیسے اس کا نام اللہ اور الرحمن، یہ نام کسی اور کے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم کسی اور کا نام یہ رکھ دیں۔ خاص طور پہ رحمان نام کو لوگ بہت زیادہ غلط طریقے سے اس طرح سے کرتے ہیں کہ کسی کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے تو رحمان رحمان صاحب کہنا شروع کر دیتے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ کہا گیا سبح اسم ربی کا، اللہ تعالیٰ کا نام بھی بہت بلند ہے اور اس کا نام بھی بہت عزت والا ہے، کیونکہ یہ اس کا نام ہے۔ उसका नाम बगैर ताजीम के नहीं लेना चाहिए, बेध्यानी में ऐसे नहीं लेना चाहिए कि जो उसकी शान के लायक ना हो। इसी तरह मैं जैसे लोग हलीम कहते, हलीम अल्लाह ताला का नाम है, अल हलीम, अब उसको अपने आपने एक खाने के ऊपर कर दिया। बेशक आप जितनी भी तावीलें करते रहे कि नहीं जी कोई बात नहीं, इससे कोई इतना नहीं हो जाता, वो तो इस तरह होता है, वो तो ऐसे होता है, मगर मैं पर्सनली समझती हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कि देखिए हम अपने नामों को तो पसंद नहीं करते कि हमारा नाम इस तरह लिया जाए कि कोई कहे मसल जो भी हमारा नाम है उसको कहे कि ये जल गया है, ये लग गया है, ये मजेदार है, ये बहुत ही बेकार है। तो देखे आप कितना बड़ा उसका अजमत वाला नाम है, हम तो उसके नाम को भी यानी उसका नाम भी इतना इज्जत वाला है, फिर हम उसके नाम को कैसे इस तरह से ले सकते हैं, चाहे कोई भी कितनी तावीले करे कि नहीं कोई बात नहीं जायज है, क्या बचना नहीं चाहिए इससे? तो इसलिए इस चीज का डिश का कोई और नाम रख दे, लेकिन ये इस तरह से ना कहें कि अल्लाह ताला के नाम की जिसमें बेअदबी होती हो। अदब आप अपने माँ बाप के नाम का या अपने नाम की, तो कोई अपने नाम की रख लेना डिश, कोई उस नाम की लिख करें और फिर देखेंगे आपको कैसा फील होता है लोग ऐसे करें। अपने लिए तो पसंद नहीं करते, अल्लाह ताला के लिए पसंद है, अजीब है बात ये। तो इस तरह से अल्लाह ताला के नाम की भी बहुत इज्जत है, और फरमाया इस्मा रब्बी का, अपने रब के, यहाँ रब क्यों कहा गया, इसलिए कि सबसे ज्यादा इंसान का जो करीबी ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ बनता है ना, वो इस नाम के जरिए से बनता है रब, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रब का माना क्या है, खालिक, मालिक, पालने वाला, उसकी परवरिश करने वाला, उसके अंदर उसकी निगेबानी भी आ जाती है, निगेदाश्त भी आ जाती है, उसकी जरूरियात को पूरा करना भी आ जाता है, उसको रिस्क देना भी आ जाता है, उसका मास्टर। और जब भी आप मालिक की बात करेंगे तो एक मालिक है, आका है, तो दूसरा क्या होगा, गुलाम होगा ना। अब देखिए हमारा अल्लाह ताला के हर नाम के साथ कोई ताल्लुक है, जब हम रब कहते हैं तो फिर समझना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, कोई औरत कहे ये मेरा शौहर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये उसकी बीवी है ना। कोई कहे बच्चा कि ये मेरी माँ है, तो इसका मतलब ये उसका बेटा है। तो इस तरह से हर नाम के साथ भी, कोई कहे कि अल्लाह मेरा रब है, तो इसका मतलब वो तो कुछ है ना, क्या ताल्लुक है उसका, मेरा रब है तो इसका मतलब आपका क्या ताल्लुक है उसके साथ। तो रब का ऑपोजिट क्या है, गुलाम। वो कह रब का मतलब है कि जो मालिक है, जो आका है। तो जब हम अल्लाह ताला को अपना रब तस्लीम कर लें ना, तब तो यहीं पे ही आपकी सारी बातें, यहीं पे आपके गिले शिकवे और यहीं पे जो सारे आपके शुकु चुबारे यहीं पे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिसको आपने मान लिया कि ये मेरा मालिक है और मैं इसका गुलाम। अब बताएं जो गुलाम होते हैं वो कैसे करते हैं, गुलाम तो आका के सामने बिछे रहते हैं, गुलाम आका के सामने आजी करते हैं, गुलाम आका से डरता है कि ये मेरा आका कहीं नाराज ना हो जाए, गुलाम आका को खुश करने की कोशिश करता है। यहाँ पे तो गुलाम भी नहीं है, आम जॉब्स पे भी लगे होते हैं, फिर भी लोग जाके कितनी खुशामदे करते हैं कि ये हमारे बॉस है। तो सोचे अगर एक गुलाम है तो वो अपने आप को गुलाम समझता है, तो वो अपने आका को कितनी तरह से खुश करने की कोशिश करेगा कि ये मेरा मालिक है। वो तो दुनिया में एक छोटे से पैसों से खरीदे हुए होते हैं, तो तब भी ये बात होती है। तो सोचे जो वो मालिक हर चीज का, तो फिर कितनी उसकी ताजीम होनी चाहिए और कितना उससे डरना और कितना उसको खुश करने की कोशिश में लगे होना चाहिए। तो जब इंसान खुद मान ले कि वो मेरा रब है, तो फिर मैं गुलाम हूं। फिर गुलाम का मतलब ये होता है कि उसके बाद वो कहे उसने ऐसे क्यों किया और उसने ये क्यों किया, और मैं तो उससे ये पूछूंगा और मैं क्यामत के दिन उसे ये सवाल करूंगा, और वो ये क्यों नहीं फैसला करता और वो क्यों नहीं करता। तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं और सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। वो तो मेरा मालिक है, जो चाहे करे, फालू लिमा युरीद। ठीक है, तो जबकि कोई रब ना समझे अल्लाह ताला को, तो फिर वो तस्बीह भी सही से नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर है वो रब ही नहीं जानता, तो फिर उसको तस्बीह कैसे आएगी उसकी जुबान पे, ये तस्बीह तो उसको पाप करार देना। इसमें रब्बी का, अपने रब की तस्बीह कीजिए, यानी वो मेरा रब है, अल आला, जो सबसे बुलंद है, उससे बुलंद कोई जात नहीं, उसको सबसे बुलंद मान लिया, सबसे ऊंचा मान लिया। पिछली सूरत सूरत तारिक सितारों की बात थी, सितारे भी बुलंद होते हैं, लेकिन उससे भी बुलंद तुम्हारा रब है। तुम सितारों से बहुत मुतासिर होते हो, इतने दूर इतने ऊपर, उससे भी ऊपर तेरा रब है। अल्लदी खलका, तो अब पिछली बात से ही आगे कि रब कौन है, रब आला तुम्हारा कौन है, वो जिसने पैदा किया, इंसान कभी अगर सोचता है ना कि मैं क्यों तस्बीह करूं, मैं क्यों तारीफ करूं, मैं क्यों परफेक्शन बयान करूं, क्या वजह है, क्या चीज है जो कि मुझे नजर आती है आंखों से, और उसके बाद मैं ये कहूं कि मैं उस रब की तस्बीह करूं, इसलिए कि उसने मुझे पैदा किया ना। पैदा करना, मैं तो होती ही ना, एग्जिस्टेंस ही मेरी नहीं थी अगर वो मुझे पैदा ना करता, तो कितना बड़ा उसका एहसान है। देखिए सारी चीजें बाद में आती, आप पैदा होते तो फिर आप कुछ करते ना, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो कुरान है, चाहे वो कोई नेमते हैं, लेकिन सबसे पहली नेमत जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर की वो हमें पैदा किया ना, उसके बाद ही हम दूसरी नेमतों को एंजॉय कर सके। लेकिन अगर पैदा ही ना होते, वो सबसे पहला कि अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसीलिए फल यंजुर इंसान मिम्मा खुलक, तुम देखो तो सही अल्लाह ताला ने तुम्हें किस चीज से पैदा किया, अपनी पैदाइश पे तो गौर करो। तो उसने यहाँ पे अपना तारुफ किस तरह कराया कि मैं तुम्हारा रब हूं इसलिए कि मैंने तुम्हें पैदा किया, पिछली मैं था खुली का, बताया नहीं अल्लाह ताला ने कि किसने पैदा किया, खुली का मिम्मा इंदाफिक, वहां पे खुली का था, मजहूल था, यहाँ पे है अल्लदी खला का, वो है वो रब जिसने पैदा किया तुमको, किससे, नुतफे से पैदा किया, फसवा, फिर सवा, सवा उन जैसे हम कहते हैं ना बराबर करना, तो बराबर किया उसको, बैलेंस किया उसको, इवन आउट किया, जैसे हम कहते हैं एक स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है वो खला का है, और एक उसके बाद उसकी फिनिशिंग करना वो समझने सवा है। ये अल्लाह ताला ने किस तरह नोक पलक समारी जिसको कहेंगे, दुरुस्त कर दिया, परफेक्ट कर दिया, जिसको हम कहते हैं ना इसकी फिनिशिंग करनी, तो कहते हैं फिनिशिंग में तो बल्कि ज्यादा टाइम लगता है, और फिनिशिंग ही तो सारी बात होती है कि वो किस तरह से, तो अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी फिनिशिंग की, कितना बराबर इसको किया, देखें बैलेंस रखा, एक साइड और दूसरी साइड बराबर है, ये नहीं कि एक हाथ लंबा और दूसरा छोटा, एक टांग लंबी और दूसरी छोटी, और इसी तरह देखें हर चीज में बैलेंस रखा इंसान की को जो बनाया है, तो ऐसे नहीं कि इवन नहीं है वो, बल्कि उसको इवन आउट किया, कितनी स्मूथ है इंसान की स्किन, इंसान के कान में एक तरफ फ्लूइड ज्यादा हो जाए एक तरफ कम हो जाए, इंसान को चक्कर आने लगेंगे, तो उसमें भी बैलेंस रखा, अल्लाह हू अकबर। तो ये इंसान ऐसा बनाया कि इंसान आज बनाता है ना तो कितना बना लेता है, क्या बहुत बढ़ के भी बना लेगा तो रोबोट बना लेगा, जो खैर वो तो भी पुर्जे जमा करके और अल्लाह ताला का दिया हुआ मटेरियल से ही बनाता है, लेकिन रोबोट में और एक इंसान में कितना फर्क है, चाहे रोबोट भी अब बातें करने लग गए या कुछ है, लेकिन जज्बात नहीं उसमें, नफ्सियात नहीं उसकी कुछ, वो रोता नहीं है, वो हंसता नहीं है, वो खुश नहीं होता, उसको किसी चीज पे दुख नहीं होता, वो अल्लाह ताला की आगे सजदे नहीं कर सकता, वो कुर्बानी नहीं दे सकता, तो वो तो एक रोबोट, एक मशीन ही है। अल्लाह ताला ने इस बात की वजह से फरमाया ना कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, या अन्नास उबदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, तुम अल्लाह की इबादत इसलिए करो कि उसने तुम्हें पैदा किया है, और फिर पैदा करके दुरुस्त किया, वल्लदी कद्दर फहदा, फिर उसने तकदीर लिखी, तकदीर क्या होती है, कद्दर क्या है, तकदीर, उसने जिसने तकदीर बना दी तुम्हारी, इसने अंदाजा तुम्हारा बनाया, फिर फहदा, फिर हिदायत बख्शी, तो तकदीर क्या है, अल्लाह ताला की जो परफेक्ट कैलकुलेशन है ना, जो उसकी प्लानिंग है, वो है तकदीर। और ये कब हुई थी, मैंने बताया आपको, जमीनों आसमान के बनाने से भी 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने इंसानों की तकदीर लिख दी थी। हम तो किसी चीज की प्लानिंग करें या अंदाजा लगाएं, तो प्लानिंग करने के बाद अगर ज्यादा अरसा गुजर जाए तो प्लान ही भूल जाता है कि क्या प्लान किया था, तो अल्लाह ताला भूलता नहीं, उसने तब प्लानिंग की थी, उसकी प्लानिंग में सोचें ये लिखा हुआ था कि एक दिन एक बंदी होगी जो यहाँ बैठी होगी, उसका नाम ये होगा, वो इस तरह पढ़ा रही होगी, ये इस तरह पढ़ रही होगी, इस तरह जाके ये करेगी, इसकी नाक नक्शा कैसा होगा, इसका चेहरा कैसा होगा, इसके बाल कैसे होंगे, इसकी तबीयत में क्या क्या होगा, इसकी जहानत कितनी होगी, कितनी लंबी होगी, कब किस जमाने में पैदा होगी, किस दिन मरेगी, किस के साथ इसकी शादी होगी, इसके बच्चे क्या होंगे, सब चीज लिखी, और ये लौहे महफूज में है जिसका भी हमने पढ़ा। अल्लाह ताला की प्लानिंग ऐसी परफेक्ट है कि वैसा ही होता है, हर माइन्यूट डिटेल तक प्लानिंग हुई हुई है, हर माइन्यूट डिटेल तक, ऊपर ऊपर की नहीं है। फहदा, फिर हिदायत दी, हिदायत भी दो तरह की है, एक कौनी और एक शराय। कौनी हिदायत का मतलब है जो नेचुरल इंसान के अंदर होती है, नेचुरल इंस्टिंक्ट जिसको कहेंगे, या बच्चा पैदा होते ही माँ का दूध पीना शुरू कर देता है, मछली पैदा होते ही तैरना शुरू कर देती है, तो ये उनको किसने, ये अल्लाह ताला ने उनके अंदर रख दी, ये कौनी हिदायत है। और एक है शरई हिदायत, कि अल्लाह ताला ने उसके लिए इंसान को लिए अंबिया भी भेजे, किताबें भी भेजी, उसके को अकल समझ भी दी उसके लिए, उसके मुताबिक उसकी फितरत के अंदर भी रखा, ये कौनी हिदायत है। तो अल्लाह ताला ने उसको सिर्फ पैदा करके नहीं छोड़ दिया, उसकी तकदीर भी लिखी हुई और उसके लिए हिदायत का इंतजाम भी अल्लाह ताला ने मुहैया कर दिया। अल्लाह अकबर, अभी सोचा कि अल्लाह ताला ने कितना एहतमाम किया, कितने लाखों अंबिया भेजे, कैसी प्यारी किताब भेजी और इसको महफूज भी रखा हमारे लिए। और पिछले वालों की महफूज नहीं थी किताबें, तो और अंबिया आ जाते थे उनको हिदायत का पैगाम देने के लिए। और फिर उसके बाद खुराक की बात, वल्लदी अखरज अल मरआ, फिर उसने मरआ निकाला, अखरजा निकाला, वो जात है जिसने अखरजा निकाला मरआ, चारा, चारा भी कहे राई चरवाहे को कहते हैं ना, तो मरआ से ग्रीनरी सारी मुराद है, जितनी भी ग्रीनरी है, तो उसने ग्रीनरी निकाली, फजालहू, फिर बना दिया उसको गुसाअन, गुसा कहते हैं खुश्क घास को, गुसा, और उसान अहवा, अहवा स्याह, यानी बिल्कुल जो स्याही मायल चीज हो जाए, यानी डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन को अहवा और उसान क्या है, खुश्क घास, कि पहले अल्लाह ताला ग्रीनरी पैदा करता है, फिर उसके बाद वो खुश्क हो जाती है, खुश्क होके फिर वो स्याह हो जाती है और खत्म हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि एक तरह एक दिन इंसान का भी यही अंजाम है, कि वो इसी दिन पैदा होगा, एक सरसब्ज शादाब होगा, और एक दिन वो रौनक खत्म हो जाएगी, एक दिन वो जो रौनकें थी, वो इंसान वो जवान होता है, भरपूर होता है, और उसके बाद वो दुनिया से चला जाता है। अल्लाह अकबर। तो दूसरा इसका माना ये है कि सब्जा था और फिर देखो पूरी जौबन पे आया, कैसे रौनक हो गई, कैसे एक दिन आएगा कि जो है ना रौनक हो जाएगी, डार्क ग्रीन हो जाएगा, लश ग्रीन हो जाएगा, और इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली है कि देखिए एक दिन ये दीन भी आगे बढ़ेगा और एक दिन ये मुकम्मल भी होगा और अपने पूरे जौबन पे भी आएगा। और दोनों माने हो सकते हैं, बास बादुल मौत का भी हो सकता है, कि जैसे एक दिन ये खत्म हुआ, चूरा चूरा हो गया, खत्म हो गया, फिर और कुछ उग जाता है, या एक दिन इंसान खत्म हो जाएगा पूरी जौबन पे जाके, और दूसरा ये कि एक दिन ये वही का सिलसिला भी मुकम्मल होगा और पूरे जौबन पे आएगी, क्योंकि आगे कुरान की बात आ रही है ना, इसलिए ये दूसरा माना भी हो सकता है, पूरा सरसब्जो शादाब हो गया ना, डार्क ग्रीन, एक ग्रीन ऐसा होता है जो स्याही मायल हो जाता है, यानी उस इतना डार्क ग्रीन होता है कि काला काला सा ग्रीन होता है, तो वो आहवा है। सनुकरियु का फला तंसा, हम आपको पढ़ाएंगे आप भूलेंगे नहीं है नबी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा ये फिक्र होती थी, पहले भी सूरह कयामा में भी हम पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत फिक्र थी कि कहीं मुझे भूल ना जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि अन करीब स अन करीब नुकरियु, हम पढ़ाएंगे का आपको फला तो ना तंसा, निसियान से आप भूलेंगे, आप भूलेंगे नहीं है नबी, हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं, ये तसल्ली दे दी गई, आप इसकी इतनी फिक्र ना करें कि मुझे भूल जाएगा, अल्लाह ताला ने खुद जिम्मेदारी ले ली कि आप नहीं भूलेंगे। सुभान अल्लाह, इल्ला माशाल्लाह, मगर जो अल्लाह ताला चाहे। अब इसका मतलब क्या कि जो अल्लाह ताला चाहे तो क्या आप सरासर भूल गए थे? नहीं, ये तो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले ली। हाँ, यहां पर इस तरह का एक्सेप्शन लाने का मकसद फिर क्या, कि अल्लाह ताला अपनी शान बयान कर रहा है कि वो जिस चीज को चाहे वो वैसे ही हो जाती है, वो अल्लाह ताला अगर किसी को बुलवाना चाहे तो वो याद ही नहीं रख सकता। और दूसरा मुफसरीन ने इसका माना लिया है कि अल्लाह ताला किसी हुक्म को मनसूख करना चाहे तो वो आपके दिल से भी भुला देगा, जैसे रजम की आयत हज़रत उमर ने फरमाया कि वो हम पढ़ते थे लेकिन फिर अल्लाह ताला ने भुला दी, तो ये भी माना हो सकता है। तो मगर जिसको अल्लाह ताला चाहे, इन्नहु यालमुल जहरा व मा यख्फा, बेशक वो जानता है अल जहर को भी और यख्फा को भी, जो आप वो जानता है, जो जाहिर करते हैं और जो दिल के अंदर है, पोशीदा है। ये जो जहर है ना, इसका उलट सिर है, इसका उलट यख्फा नहीं है। लेकिन यहां पर देखें, एक तो यख्फा वर्ब आया और अलजहर नाउन आया। तो अल्लाह ताला जानता है जो जाहिर है और जो पोशीदा है। तो पहली बात ये कि ये नहीं है उसका उलट, तो उलट तो आना चाहिए था कि अल्लाह ताला सिर को भी जानता है। मगर सिर सीक्रेट को कहते हैं, जैसे पहले आया ना सीक्रेट। सीक्रेट बाज दफा इंसान दूसरे को बता भी देता है, तो मुंह पे तो आई ना सीक्रेट, बताते हुए आहिस्ता आहिस्ता बताता है, तो वो जाहिर तो हुई कहीं, लेकिन अख्फा वो सीक्रेट है जो कभी बाहर आई ही नहीं, कभी भी नहीं आई। और जहर वो जो जाहिर होता है। अब वो नाउन है और ये वर्ब है, तो जो चीजें दिलों में है वो तो ज्यादा देर दिल में नहीं रहती, वो तो कभी बाहर भी आ जाती है। और जो जाहिर में होती हैं वो ज्यादा होती हैं, चीजें जो दिलों में होती हैं वो कम होती हैं। तो नाउन जहर के लिए आया और यख्फा वर्ब छुपे हुए के लिए आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तो ये तसल्ली दे दी गई कि आप भूलेंगे नहीं ऐ नबी, और अल्लाह ताला जानता है जो आप तिलावत करते हैं जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ, और जो उसने आपको भुला दिया वो उसको भी जानता है, और वो ये भी जानता है कि वो जो आप दिल के अंदर सोचते हैं कि मैं फिक्र कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुझे भूल ना जाए, वो उस फिक्र को भी जानता है। तो वो इतनी पोशीदा बातों को भी जानता है, फिर उससे इंसान छुप कैसे सकता है? खास दफा इंसान को खुद भी नहीं एहसास होता कि मेरे अंदर क्या नीयत है, क्या मेरे अंदर छुपी हुई नीयत बिल्कुल अंदर जाके कहीं है, अल्लाह ताला उसको भी जानता है। इस अकीदे को और मजबूत करने की जरूरत है। वह नुयस्सिरु का लिल युसरा, और अल्लाह ताला ने अपने नबी को ऐसे ही तो नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरत इतनी पसंद थी, अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक और तसल्ली दी, ए नबी हम आपके लिए आसानी कर देंगे, आसानी के लिए हम आसानी कर देंगे, आसानी के लिए। क्या मतलब? देखिए, वनुयस्सिरु का फरमाया, नुयस्सिरु ल का नहीं है, हम आपके लिए आसानी कर देंगे, यहाँ पे तो ये हम आपको आसान कर देंगे ये माना बनता है, लेकिन लाम को भी हटा दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब के लिए। नून शुरू में ना हम कर देंगे और का है फिर साथ ही, हम इतना आसान कर देंगे आपके लिए, तो इसको भी करीब कर दिया गया, का को लाम भी हटा दिया गया। तो यानी अब आसान नहीं, बल्कि हम आपके लिए आसान कर देंगे रास्ता, ताकि पहुंच जाए आप लिल युसरा, युसरा तक पहुंच जाए, अल्टीमेट आसानी तक, बहुत ज्यादा आसानी तक। यानी ये नहीं है कि अभी मुश्किल है तो आगे आसानी, अल्टीमेट आसानी तक आप पहुंच जाए, जितनी से ज्यादा कोई आसान चीज नहीं हो सकती, उस तक आप पहुंच जाए। तो यानी आपकी ये सारी स्ट्रगल को आसान कर दिया जाएगा, अल्लाह ताला आपके कुरान पहुंचाने को आसान कर देगा, अल्लाह ताला आपके लिए हिफ्ज रखना, याद रखना आसान कर देगा, और आपके जो मिशन है इसको आसान कर देगा। यानी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां ही आसानियां कर देगा। और इसका ये भी किया गया, इसकी मुराद युसरा से मुराद जन्नत भी ली गई, कि अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत को आसान कर देगा, ऐ नबी हम आपके लिए इतनी आसानी कर देंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशखबरी थी। आप देखे पहले हमने पढ़ा था ना, बोला था यसन्नल कुरान ले दिक्री पहल में मुद्दत, ये जो सूरह कमर में था, हम आसानी कर देंगे आपके लिए नसीहत, ये कुरान को नसीहत के लिए। तो ये कुरान का हिफ्ज करना भी आसान, और कुरान की जो, इसीलिए तो आप देखें दुनिया में इस किताब के जितने हाफिज हैं किसी और के नहीं। दूसरा ये कि इसका, इसको दावा के मैदान में भी, कि इसकी नशरो इशायत इसको आगे पहुंचाना भी आसान कर देंगे। आपके पास कितना लिमिटेड टाइम था, बहुत ज्यादा लंबा टाइम तो नहीं था, सिर्फ 23 साल के अंदर जो इनकलाब आया, कि कहां वो जो बद्दू थे और मुशरिक थे, बुत परस्त थे, वो कहां इस्लाम के लिए जाने कुर्बान कर देने वाले बन गए, और कहां उनके ईमान के लेवल चले गए, कोई सोच भी नहीं सकता कि 23 साल में ऐसी। यहाँ पे तो देखें कौमें आती हैं और कितने साल हो जाते हैं मुल्कों को आजाद हुए हुए, और क्या उनकी हालत होती है, आप खुद ही अपने अपने मुल्कों को देख लें कि भाई क्या उनके हालात होते हैं, कि कैसा एक जिहालत के अंदर जो पड़ी हुई कौम, उसको किस तरह से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरिया बनाया, कि कैसे उनको उठा के कहाँ तक पहुंच गए, रदियल्लाहु अन्हु वरदू अन्ह बन गए। और जब हम पिछले टाइम की बात करते हैं तो हम कहते हैं जमाना जहालत, इतनी जहालत थी तो सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने कैसे आसानियां कर दी, और चीजें आसान हो जाती हैं, चीजें आसान हो जाती हैं जब इंसान शुरू करता है, तो कोई भी चीज मुश्किल होती है बेशक, लेकिन जब इंसान उसको करना शुरू करता है ना और करता जाता है, अल्लाह ताला आसानियां करता ही जाता है, और वो फिर चीज उसकी पार्ट ऑफ नेचर बन जाती है। फिर लोग कहते हैं आप कैसे कर लेते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा मुझे तो नहीं मुश्किल लगता, क्योंकि देखिए जब इंसान चलता रहता है ना एक रास्ते पे, तो वही आसान हो जाता है। अब आप यहाँ पे बैठ के इतनी देर कुरान सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई लोग आपको देखते होंगे वो कहते हैं आप कैसे कर लेते हैं, आप कैसे पढ़ लेते हैं, आप इतनी देर कैसे, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, ये उस वक्त होता है जब आप कदम बढ़ाते रहें चलते रहें, तो अल्लाह ताला उसी चीज को आसान फरमा देता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने युसरा फरमाया, इजीएस्ट, एक होते ना युसर और एक है युसरा, इजीएस्ट तक अल्लाह ताला आपको पहुंचा देगा, इतनी आसानी करेगा। और पहले भी नहीं कि ओसर थी और उससे युसर तक, नहीं, नुयस्सिरु का लिल युसरा, हम आसान कर देंगे युसरा तक, इतनी आसानी करेंगे कि इजीएस्ट हो जाएगा, सुभान अल्लाह। तो यहां तक आज का हम अपना लेसन रखते हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम अगली भी दो सूरतें करने की कोशिश करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
بسم الله الرحمن الرحيم
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى